वैदिक भक्ति पर एक दृष्टि। वैदिक भक्ति के जिस रूप का विवेचन हमने अभी किया है, उससे प्रकट होता है कि प्रभु निराकार होते हुए भी निर्गुण और सगुण विविध रूप वाले हैं। प्रकृति और जीव के गुणों से ऊपर होने के कारण वे निर्गुण और अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त होने के कारण वे सगुण हैं। सगुण का अर्थ न तो साकार है और न निराकार रूप में अवतरित होकर जीव समान धर्मा होना। जब अवतार नहीं तो प्रतिमाओं के रूप में उसकी चर्चा भी वेद विहित नहीं दिखाई देती, अर्चा भी वेद विहित नहीं दिखाई देती। शिवलिंग के अतिरिक्त जितनी प्रतिमाएं पूजा पद्धति में प्रयुक्त होती हैं, वे सब की सब किसी न किसी ऐतिहासिक महापुरुष या देवी के साथ संबंध रखती हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग का अर्थ ही संस्कृत भाषा में चिन्ह या प्रतीक है। शालिग्राम की बढ़िया भी प्रतीकार्थ रखती है और उसका कुछ औषधि परक उपयोग भी बताया जाता है। प्रतीकोपासना वेद में तो नहीं पर उपनिषद साहित्य में कहीं कहीं उल्लिखित हुई है। प्रतिमा पूजन का कोई पता वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं होता। वेद ने न तस्य प्रतिमा अस्ति यजुर्वेद 32:3 कहकर प्रभु की किसी भी प्रकार की प्रतिमा का स्पष्ट रूप से प्रत्याख्यान कर दिया है। प्रतिमा पूजन यदि प्रतीक पद्धति तक ही सीमित रहता तो विशेष हानि नहीं थी, परंतु जब वह प्रतिमा रूप में ही समावसित हो गया, उसके द्वारा गुणों के बोध अथवा भाव राशि तक साधक की वृत्ति न पहुंच सकी तो वह निस्संदेह शोचनीय है। प्रतिमा को स्नान कराना, फूल चंदन अक्षत आदि द्वारा उसकी अर्चा करना, श्रृंगार प्रसाधन आदि द्वारा उसे सुसज्जित करना, सुलाना और जगाना, भोग लगाना और चरणामृत लेना आदि ऐसी बातें हैं जो प्रतिमा पूजन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न हैं। पांचरात्र संहिताओं में इनका विराट विधि विधान वर्णित हुआ है। एसएन दास गुप्ता और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी भाग 3 पृष्ठ 21-22 इस संबंध में देखने योग्य है। प्रभु को छोड़कर प्रतिमाओं को ही सब कुछ समझ लेना, उन्हीं की अर्चा पूजा में लग जाना एक ऐसा कार्य है जो निश्चित रूप से मानव की चेतना शक्ति को कुंठित करने वाला है। भागवतकार ने संभवतः इसी आधार पर इसे हेय तथा गर्हित कहा है। भागवत 3:29-22 गॉड हिमसेल्फ इज एसेंशियली स्पिरिट एंड ऑल ट्रू वर्शिप मस्ट बी रियल एंड स्पिरिचुअल इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ पाथवेज टू द रियलिटी ऑफ गॉड पृष्ठ 195। जो साधन साधक के अंदर चेतना के स्फुलिंग उद्भूत न कर सके वह साधना की दृष्टि से एकांत भ्रांत एवं नितांत निरर्थक है। वेद का अर्थ ज्ञान है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, सर्वोत्तम प्रकाश है और आनंद के धाम है। वैदिक भक्ति पद्धति साधक को चेतना के ज्ञान के उत्तुंग शिखरों तक ले जाती है जहाँ आनंद का स्रोत है। वह प्रतिमा पूजन की भांति देव विग्रह को देव मंदिरों में बंद नहीं कर देती, प्रत्युत उसकी व्याप्ति ब्रह्मांड भर में अनुभव कराती है। देवाधिदेव परमेश्वर इस ब्रह्मांड में तो व्याप्त है ही, इस ब्रह्मांड को अतिक्रांत करके भी विद्यमान है। ब्रह्मांड उनकी महिमा का केवल एकांश है। ब्रह्मांड में तमोगुण और रजोगुण से ऊपर सतोगुण है। तमोगुण में पार्थिव स्थूलता जड़त्व और निष्क्रियत्व है, रजोगुण में प्राणवत्ता क्रियाशीलता तथा अपेक्षाकृत सूक्ष्मता है, सतोगुण में इससे भी अधिक सूक्ष्मता और प्रकाश है। इस प्रकार ब्रह्मांड अपने सूक्ष्मतम रूप में प्रकाशमय है, सतोगुण से ऊपर आत्म तत्व की स्थिति है, यह भी प्रकाशमय है और सबके प्रकाश से उत्तर अर्थात श्रेष्ठतर है, परंतु उस सर्वोत्तम ज्योति प्रकाश स्वरूप तेज पुंज प्रभु के प्रकाश के सामने इनमें से किसी का प्रकाश नहीं ठहर पाता। उसका वरेण्य भर्ग सर्वश्रेष्ठ प्रकाश अन्य समस्त तेजों का स्रोत है, ज्योतियों का उद्गम है। इस प्रकाश में ज्ञान है, निर्भयता है, जीवन है, आनंद है। प्रभु के प्रकाश का जो व्यक्ति ध्यान और धारण करता है वह निर्भय ज्वलंत जीवन नय तथा आनंद दय बन जाता है। ज्वलंत जीवन यय तथा आनंद यय बन जाता है। वैदिक भक्ति के स्वरूप का अध्ययन पाठकों को इसी स्थिति का ज्ञान कराता है। प्रभु की उपासना मानव निर्मित प्रकोष्ठों में परिमित प्राकारों में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि चेतना और भावना की उन्मुक्त उड़ान परिमिति के पार्श्वों में जकड़कर अवरुद्ध हो जाती है। भावना के स्वच्छंद विहार के लिए बंधनों से मुक्त सरिता तट का संगम तथा गिरि शिखर का अधिष्ठान ही सहायक हो सकता है। वेद इसी हेतु इन दोनों दशाओं की ओर संकेत करता हुआ उपलक्षण द्वारा अन्य समान धर्मा दशाओं का भी विधान करता है। यजुर्वेद 26:15 प्रभु तक पहुंचने के लिए भक्त जिन साधनों का अवलंबन लेता है उनमें ज्ञान कर्म एवं भक्ति तीनों का सामंजस्य है। भक्ति वहां ज्ञान और कर्म का तिरस्कार नहीं करती। योग याग तप व्रत श्रद्धा दीक्षा सबकी वहाँ मान्यता है, सबकी सहायता की अपेक्षा है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में योग के साथ ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों को स्थान दिया है। यमों और नियमों में तो ये अंतर्भुक्त हैं ही, इनसे पृथक भी योग दर्शन में इनका वर्णन आया है। इस संबंध में सूत्र 1 से 16, 23, 27 और 28 देखने योग्य हैं। वस्तुतः ज्ञान कर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक बनकर पारस्परिक सहयोग द्वारा साधक को प्रकाश पुंज सुधा सिंधु आनंद के आगार प्रभु तक पहुँचाने वाले हैं। परवर्ती भक्ति काल में उन्हें स्थान प्राप्त नहीं हो सका, वेद कालीन उच्चासन से वे च्युत कर दिए गए हैं और परिस्थितियों के प्रभाव ने उन्हें भक्ति के समान स्तर पर बैठने से वंचित कर दिया है। वेद जितने उत्साह वर्धक शब्दों में जीव को उद्बोधन देता है, परवर्ती भक्ति काल में इसका अभाव भी खटकता है। वेद साधक को कामी, कुटिल, पापी, निर्बल और कायर नहीं कहता, वह उसे उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जीव हंस पक्षी के समान ऊर्ध्व गमनशील है, अधोगति उसके स्वभाव में ही नहीं है। प्रकृति का संसर्ग उसे पतन की ओर प्रेरित करता है, अतः इस संसर्ग से उसे दूर रहना चाहिए। इससे बचने का सुगम मार्ग है प्रकृति को पहचान लेना, जो प्रवृत्ति मार्ग द्वारा ही संभव है। इस प्रवृत्ति में साधक को प्रकृति का सेवक नहीं स्वामी बनना चाहिए और साधना द्वारा शनि शनि प्रकृति के सूक्ष्मतर स्तरों पर आधिपत्य प्राप्त करते हुए पूर्ण स्वाधीनता की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वाधीनता स्व अर्थात अपने में प्रतिष्ठित होने का नाम है। यही अवस्था आनंद धाम प्रभु तक पहुँचाने वाली है। वैदिक भक्ति के साधनों में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, अभ्यास तथा वैराग्य दोनों सम्मिलित हैं। परवर्ती भक्ति काल में निवृत्ति को प्रधानता प्राप्त हो गई है। वेद शरीर को बलिष्ठ, यशस्वी और पवित्र बनाने का आदेश देता है। समाज के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार तथा उदारता पूर्वक अपने सुख के साथ सबके सुख की कामना करने का निर्देश करता है। उसे अपने चारों ओर दृष्टि रखनी है और साथ ही अपने में केंद्रस्थ भी होना है। यह वैदिक व्यक्तिवाद और समाजवाद का समन्वय है, जिसमें एक ओर व्यक्तिवाद की समाज निरपेक्षता दूर होती है और दूसरी ओर उसकी घोर स्वसापेक्षता। व्यक्तिवाद का भयंकर तथा हानिकारक रूप एकांत स्वार्थ लिप्सा है, जो समाजवाद की सापेक्षता द्वारा ही नष्ट हो सकता है। व्यक्तिवाद का ऊर्जस्वित तथा श्रेयस्कर रूप शरीर, मन एवं बुद्धि को निर्मल बनाकर आत्मा की पवित्रता संपादन करना है। बेंथम, मिल और सिजविक के उपयोगितावाद में अधिक मनुष्यों का अधिक सुख धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक दबावों और विभीषिकाओं से रक्षा पाता है। वेद मानव के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य में रखकर किसी दबाव की कल्पना नहीं करता। वह साधक को कल्याण मार्ग में जुटाकर सबके सुख की ओर दृष्टि रखने के लिए प्रेरणा देता है और उसकी स्वेच्छा को ही सबकी मंगल कामना का रूप प्रदान करता है। मिल का आंतरिक दबाव या नैतिक भावना इस अवस्था के निकट है। पीडब्ल्यू ब्रिगमैन ने अपने ग्रंथ रिफ्लेक्शन ऑफ अ फिजिसिस्ट के पृष्ठ 77 पर व्यक्तिवाद के जिस उदात्त स्वरूप की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है, यह भी ध्यान देने योग्य है। उसके विचार में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम समस्या मानवों को सामाजिकता से आगे अपने व्यक्तिगत धरातल को समझ लेने की है, जिसमें वे सामाजिक जीवन के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन का साक्षात करते हुए स्वाधीनता पूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इज टू गेट पीपुल टू सी दैट देयर इज अ प्राइवेट लेवल बियॉन्ड द पब्लिक लेवल एंड टू लर्न हाउ टू लिव विथ दिस रियलाइजेशन और इन ऑर्डर और इन अदर वर्ड्स टू लर्न टू लिव विथ देयर फ्रीडम। वैदिक भक्ति व्यक्ति के शुद्धात स्वरूप को तो हृदयंगम करा ही देती है, वह इससे एक पग और आगे रखती है। वह व्यक्ति को समाज से पृथक करके नहीं देखती। उसके अनुसार साधक का जो स्वरूप बाहर समाज के अंतर्गत दिखाई देता है, वह अंतरात्मा निरपेक्ष नहीं है। उसका उद्भव आंतरिक स्वाधीनता में हुआ है। वेद यदंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तदंतरम, अथर्ववेद 2:30-4 सिद्धांत का समर्थक है। इसी हेतु वैदिक भक्ति में साधक का विचार, उच्चार और आचार अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप एक है। वैदिक भक्ति के तीन अंग हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। भागवत भक्ति के जिसका निरूपण हम आगे चलकर करेंगे, नवधा भेद वैदिक भक्ति में समग्र रूप से अंतर्भुक्त नहीं हो पाते। इसका एक कारण भागवत भक्ति का अर्चा अर्थात मूर्ति पूजा से संबद्ध होना है। भागवतों की नवधा भक्ति को यद्यपि संत सुंदरदास ने अपने ग्रंथ ज्ञान समुद्र के द्वितीय उल्लास में निर्गुण भक्ति पर भी घटा दिया है, पर यह कार्य उन्होंने पार्थिव पूजन के रूप में नहीं मानसिक पूजन के रूप से ग्रहण किया है। हमने वैदिक भक्ति के तीनों अंगों को गुण, कीर्तन, प्रार्थना, व्याकुलता, साधन और सिद्धि नाम के पांच अंगों में विभक्त किया है। इस विभाजन से वैदिक भक्ति में स्थान पाने वाली विभावनाएं भी पाठकों के समक्ष आ जाती हैं, जो सगुण एवं साकार अवतारी इष्ट देवों के संबंध में भागवत भक्तों के हृदय से निस्सृत हुई हैं। वेद ने भक्ति के लिए जिन साधनों का प्रतिपादन किया है वे जगत ज्ञान, आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान से संबद्ध है। ऋग्वेद 8:43-14 के अनुसार भक्त को अग्नि, विप्र और सखा के क्रमशः कर्म, ज्ञान और प्रेम भाव को संपादित करने का निर्देश प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा वह जागतिक प्रपंच से, ज्ञान द्वारा कर्म के बंधन से और प्रेम द्वारा ज्ञान का भाव में समावेश कर लेने से मुक्ति पाता है। वह भावापन्न मुक्ति भी अंत में प्रभु के दर्शन, ज्ञान और आनंद रूप से ही मंडित है। अंतर्दृष्टि की जो व्यापकता और गंभीरता वैदिक भक्ति पद्धति के साधनों में अभिव्यक्त हुई है वह परवर्ती मुनियों की वाणी में परिलक्षित नहीं होती। अनिर्ण भावना का चतुर्दिक स्पर्शी वर्णन, ज्ञान पूर्वक त्याग का प्रतिपादन, योग यज्ञ और ज्ञान का समन्वय ऐसे साधन है जो परवर्ती भक्ति काल में अपदस्त ही नहीं तिरस्कृत भी हुए हैं। वेद ने इन सबको साधनों के अंतर्गत स्थान दिया है और जैसा हम लिख चुके हैं इनके सहयोग में सिद्धि को निश्चित रूप से स्वीकार किया है। सिद्धि का जैसा वर्णन वेद में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं और वह अन्यत्र उपलब्ध हो भी नहीं सकता। परवर्ती काल के मानव ऋषियों की क्रांत दृष्टि अथवा साक्षात्कार की भूमिका तक पहुंच ही नहीं सके। इस क्षेत्र में मानव का विकास नहीं ह्रास हुआ है। गंगा जल की जो पवित्रता हिमालय के अंचल में है वह हरिद्वार में नहीं और जो हरिद्वार में है वह प्रयाग और काशी में नहीं। कलकत्ते के पास तो उसका नाम मात्र रह गया है। वेद के तपपूत ऋषि जिसे साक्षात देख सके थे और अपने निर्मल परंतु समर्थ वाणी में जिसकी अभिव्यक्ति कर सके थे उसकी थोड़ी सी झलक की बात के अधिकांश साधक और भक्त दिखा सके हैं। संभवतः वे प्रभु प्राप्ति रूप सिद्धि तक पहुंच ही नहीं सके, सत की झांकी देखकर ही वे शांत और संतुष्ट हो गए हैं। वैदिक भक्ति में जिस सिद्धि रूप मोक्ष की अवस्था का वर्णन है उसमें जीव का अहम भाव बना हुआ है। आचार्य रामानुज और वल्लभ ने भी मोक्ष अथवा लीला धाम प्रवेश में जीव की अहम भावना तथा उसके पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया है। साकार इष्ट देव की भावना वैदिक भक्ति में दिखाई नहीं देती पर प्रभु के जिस रूप की वहाँ मान्यता है वह भी कोई कल्पना पर आश्रित नहीं है। उसकी सत्ता है, एक व्यक्तित्व है जो निराकार है। वेद प्रेम परक, प्रगति परक तथा दर्शन परक कुछ ऐसी रहस्यमय भावनाएं भी प्रकट करता है जो सामी संप्रदायों की साधना में प्रकट हुई हैं। ऋग्वेद 1:24-10 में ऋषि कहता है, अमि य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तम ददृशे कुहचित दिवेयु। जो तारे रात्रि में चमक रहे थे वे दिन निकलते ही कहाँ चले गए। यजुर्वेद 17:20 तथा ऋग्वेद 10:81-4 में ऋषि कौतूहल पूर्वक जिज्ञासा से भरा प्रश्न करता है, किंचित वनम क उस वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु। अरे वह कौन सा जन है, वहाँ का कौन सा वृक्ष है जिसके उपादान से इस द्यावा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अथर्ववेद 10:7-37 का ऋषि बाहर प्रकृति के और अंदर मन के आश्चर्यकारी रूपों को अनुभव करके गा उठता है, कथम वातो नेलयति कथम न रमते मनः किमापः सत्यम प्रेत संति नेलयन्ति कदाचन। अरे यह वायु क्यों चली ही जा रही है, ठहर क्यों नहीं जाती, ये बाहर जल के प्रवाह बढ़ते ही जा रहे हैं, ये विश्राम क्यों नहीं लेते और यह अंदर की ज्योति यह मन क्यों भागा भागा फिरता है, एक ही स्थान पर रमण क्यों नहीं करता। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के रूप में आत्मा के जो उद्गार वेद में अभिव्यक्त हुए हैं वे भी हम साधारण मानवों के लिए कम रहस्यमय नहीं है। वेद में जीव की प्रभु से विरहावस्था का भी अत्यंत करुण मर्म स्पर्शी तथा हृदय द्रावक वर्णन उपलब्ध होता है। व्याकुलता शीर्षक में इस संबंध के मंत्र पाठकों को मिलेंगे। वैदिक भक्ति इस प्रकार परवर्ती काल की भागवत शैव आदि भक्ति पद्धतियों से कई अंशों में भिन्नता एवं समता रखती है। ब्राह्मण और भक्ति। एतरेय ब्राह्मण, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा जब इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता तो वेद ही हमारा सहायक बनता है। वेद का वेदत्व इसी में निहित है कि वह अलौकिक उपाय का ज्ञान कराता है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद की व्याख्या करने वाले हैं जिनमें एतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद के साथ है। कहा जाता है कि एक महर्षि के कई पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम इतरा था। इसी इतरा का पुत्र महिदास था जिसे एतरेय भी कहा जाता है। एक दिन यज्ञ सभा में उस महर्षि ने महिदास की अवज्ञा करते हुए अन्य पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया। ऋषि का स्नेह भी महिदास पर नहीं था। इस घटना से महिदास अत्यंत खिन्न हुआ। उसकी खिन्नता से आहत होकर इतरा ने अपनी कुल देवता भूमि का स्मरण किया। भूमि देवता ने दिव्य मूर्ति धारण करके यज्ञ सभा में महिराज को दिव्य सिंहासन पर बैठाया और उसे पांडित्य प्रवीणता का वरदान दिया। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण का निर्माण हुआ। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। सर्वप्रथम 4 संस्था वाले ज्योतिषोम यज्ञ का वर्णन है। उसके पश्चात भी आदित्य और आंगिरसों के अयन का उल्लेख है। उसके पश्चात द्वादश यज्ञ आदि आते हैं। यज्ञों में ज्योतिषोम यज्ञ की प्राथमिकता है। ऋग्वेद दिव्य शक्तियों की स्तुति का वेद है। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारंभ में ही निम्नांकित शब्द आते हैं। ओम अग्निर्वय देवानाम अवमह विष्णु परमह तदंतरेण सर्वा अन्या देवता। दिव्य शक्तियों में सबसे नीचा स्थान अग्नि का है और सबसे उत्तम स्थान विष्णु का है। यास्क ने अपने निरुक्त में भी ज्योतिषियों का वर्णन करते हुए अग्नि को पृथ्वी स्थानीय यास्क ने अपने निरुक्त में भी ज्योतियों का वर्णन करते हुए अग्नि को पृथ्वी स्थानीय और विष्णु को जो स्थानीय लिखा है। यद्यपि अग्नि और विष्णु शब्द पृथ्वी की अग्नि और देवलोक के सूर्य के वाचक हैं, तथापि दोनों शब्द एक परमात्मा का अर्थ भी देते हैं और ऐसी दो कोटियों के प्रतिपादक हैं जिनके बीच में इंद्र वायु आदि सभी प्रधान देवता सुरक्षित रहते हैं। जो मध्य में रहता है वह अपनी अवम और परम दोनों कोटियों के द्वारा गृहित होता है। अतः अग्नि और विष्णु के बीच में आने वाले देवता भी उनसे पृथक नहीं कहे जा सकते। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मणकार कहता है अग्नि वह सर्वा देवता विष्णु सर्वा देवता। इस प्रकार एक ही दिव्य तत्व अन्य समस्त दिव्य तत्वों का वाचक बन जाता है। पौरोडाशिक कांड में तैतरीय कहते हैं ते देवा अग्नो तनु सन्य दधत तस्मात आहु अग्नि सर्वा देवता। सौमिक कांड में भी लिखा है देवासुरा संयत्ता आसन ते दिवा विभ्यत अग्निम प्राविशन तस्मात आहु अग्नि सर्वा देवता। विष्णु शब्द विष्णु धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है व्याप्ति। इसलिए कहा जाता है भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु। यास्क ने निरुक्त में यह भी लिखा है कि एक ही आत्मा विभिन्न देवताओं के नामों से स्तुत हुई है, अर्थात अग्नि विष्णु इंद्र आदि नाम उसी एक परम तत्व की व्याख्या करने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जिन यज्ञों का विवरण प्रस्तुत किया गया है वे भी मूलतः इसी परम तत्व की व्याख्या करते हैं। अग्नि और विष्णु यदि दो दैव कोटियां हैं तो वही सोमयाग के आदि और अंत भी हैं। यज्ञों के द्वारा मानव दिव्य शक्तियों की परिचर्या की जा रही है। गायत्री सृष्टुप और जगती छंद भी इन्हीं दिव्य शक्तियों के साथ संबद्ध हैं। न केवल छंदो विधान प्रत्युत ओम अक्षर की तीन मात्राएं वेद त्रयी त्रिलोकी आदि भी इनके साथ संबंध रखती हैं। इसी आधार पर ज्ञान कांड कर्म कांड और उपासना या भक्ति कांड का भी प्रवर्तन आर्य जाति में हुआ। अतः यज्ञ भक्ति के विरोधी नहीं प्रत्युत अविरोध भाव से उसके साथ साथ चलने वाले हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के शब्दों में प्रजायते प्रजया पशु भी यह एवं वेद। जो ऐसा जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा समृद्ध होता है। यज्ञकर्ता दीक्षित होकर जब यज्ञ का प्रारंभ करता है तब वह सर्वप्रथम उस परम तत्व के वाचक ओम नाम का स्मरण करता है। यदि कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वह पुनः उच्च स्वर से ओम नाम का उच्चारण करता है। यज्ञों में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उनकी निरुक्ति करता हुआ ऐतरेय ब्राह्मणकार कहता है आहूत तयो वै नाम एता एत आहुतयः एता भीर वै देवान यजमानो भयति तत आहुति नाम आहुति तत्त्वम्। अर्थात आहुतियों का नाम आहुति इसलिए है कि इनके द्वारा यजमान दिव्य शक्तियों का आह्वान करता है। दिव्य शक्तियों का आह्वान स्वतः दिव्यता की ओर ले जाने वाला है। भक्ति कांड भी मानव किसी सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और वह यज्ञ के अंदर सम्मिलित है। आचार्य सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण 2:8 की भूमिका में लिखा है ईदृशम यजनम यदस्ति तत् क्रियमाणस्य यज्ञस्य अदिति द्वारा देवेषु प्रज्ञानाय संपद्यते तस्य देव प्रज्ञानम यजमानस्य स्वर्ग लोकावगमाय भवति। यज्ञ की प्रक्रिया वास्तव में देव प्रज्ञान के लिए ही है। यह देव प्रज्ञान सुख विशेष की ओर ले जाने वाला है। पीछे हम भक्ति कांड को आनंदमय कोष के साथ संबंध रखने वाला लिख ही चुके हैं। मानव के सभी कर्म विविध शक्तियों के आधार पर कल्पित हुए हैं। इसका संकेत तृतीय खंड के प्रारंभ से इस प्रकार उल्लिखित है देव विषय कल्पयितव्या इत्याहुता कल्पमाना अनु मनुष्य विषय कल्पन्ते इति सर्वा विषय कल्पन्ते कल्पते यज्ञो अपि। दिव्य शक्तियों में ब्राह्मण आदि जाति भेद हैं। अग्नि और बृहस्पति ब्राह्मण हैं। इंद्र वरुण सोम रुद्र यम मृत्यु ईशान क्षत्रिय हैं। वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुत वैश्य हैं। उषा शूद्र है। इन्हीं दिव्य शक्तियों के कार्यों को देखकर मानव जाति में ब्राह्मण आदि चार वर्णों की कल्पना की गई है। यज्ञ का विधान भी इन्हीं विविध शक्तियों के आधार पर किया गया है। उपासना कांड भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। यज्ञ में जप का विधान भक्ति कांड की ही भांति है। ऐतरेय ब्राह्मण दशम अध्याय के छठे खंड के प्रारंभ में ऋषि लिखता है, होत्रि जपन जपति उपांशु जपति। सायण ने इसकी व्याख्या में लिखा है, होतु कर्तव्यो यो जपह तम अनुतिष्ठेत ओष्ठ स्पंदनम एव परै दृश्यते न तु शब्दः श्रूयते तादृशम उपांशुत्वं तस्य जपस्या शोंसा वोम इति एतस्मात् आहावात् पूर्व भावित्वं विद्यते। ओंकार के जप का विधान ब्राह्मण युग की विशेषता कही जा सकती है। उपासना में जिस प्रकार दिव्य तत्व का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार यज्ञ के अंदर भी करना पड़ता है। ऐतरेय ब्राह्मण 11:8 के प्रारंभ में ही लिखा है, यस्यै देवताये हविर्गृहीतम् स्यात् ताम् ध्यायेत। जिस देवता के लिए हवि दी जाती है, उसी देवता का ध्यान करना चाहिए। आचार्य सायण ने इसके भाष्य में लिखा है, देवता अर्थात दिव्य शक्ति आंखों से दिखाई नहीं देती, अतः उसका मानस प्रत्यक्ष करना विवक्षित है, जो ध्यान द्वारा ही संभव है। ऐतरेय ब्राह्मण के 25वें अध्याय के 7वें खंड में ओम की उत्पत्ति और उसकी महत्ता वर्णित हुई है। प्रजापति ने कामना की, मैं प्रजा उत्पन्न करूं और बहुत हो जाऊं। उसने तप किया और तप करके पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ तीनों लोकों को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के तप्त होने से तीन ज्योतियां उत्पन्न हुईं, पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और द्योलोक से आदित्य। पुनः इन तीन ज्योतियों के तप्त होने से तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद उत्पन्न हुआ। तीनों वेदों के तप्त होने से तीन शुक्र उत्पन्न हुए, ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवा और सामवेद से स्व। इन तीन शुक्रों के तप्त होने पर अकार, उकार और मकार तीन वर्ण उत्पन्न हुए, जिनका एकधा समीकरण ओम कहलाता है। यह ओंकार स्वर्ग प्राप्ति का हेतु है। ऐतरेय ब्राह्मण भक्ति संबंधी स्वल्प सामग्री देता है। ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा, ओम और उसके जाप का महत्व इस ब्राह्मण में अवश्य मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद के साथ है, जो ज्ञान कांड का वेद है। ज्ञान को भावना तक पहुंचने में देर लगती है। जब तक ज्ञान भावना में परिणत न हो, तब तक वह सबसे दूर दूर रहता है। अतः ऐतरेय ब्राह्मण में भक्ति भावना की सामग्री का यदि अभाव या स्वल्पांश है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मूल का परित्याग करना सबके लिए असंभव है। समस्त वेदों, विद्याओं तथा स्वर समूहों का मूल ओम है, अतः उसकी महत्ता ऐतरेय ब्राह्मण में भी असंदिग्ध रूप से वर्णित हुई है। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। वैदिक वाङ्मय का इनके साथ विशेष संबंध है। कहा जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम महामुनि शाकल्य से ऋग्वेद का अध्ययन किया, परंतु अनर्थ देश के राजा के संबंध में किसी विवाद के उठने पर गुरु ने इनकी अत्यंत भर्त्सना की। अतः गुरु की आज्ञा और उनके शाप से भयभीत होकर इन्होंने शाकल्य से पढ़े हुए ऋग्वेद का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात अपने माता महामुनि वैशंपायन से इन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन किया, परंतु उनसे भी याज्ञवल्क्य का झगड़ा हो गया और परिणामतः इन्हें अधिक यजुर्वेद को भी छोड़ना पड़ा। अंत में मानुष गुरु से न पढ़ने की प्रतिज्ञा करके इन्होंने 24,00,000 गायत्री के पुरस्चरण और तपस्या द्वारा भगवान आदित्य को प्रसन्न किया और इनसे चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। याज्ञवल्क्य विश्वामित्र के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता चारायण, देवराज, ब्रह्मराज, यज्ञवल्क, वाज सनी आदि कई नामों से पुकारे जाते हैं। इनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी से कात्यायन नामक के नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। कात्यायन का ही दूसरा नाम पारस्कर भी कहा जाता है। आर्यों की इतिहास परंपरा के आधार पर वैशंपायन राजा जन्मेजय के समकालीन है, अतः उनके दौहित्र याज्ञवल्क्य महाभारत युद्ध के लगभग 100 वर्ष बाद के माने जा सकते हैं। वेद के दो संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। याज्ञवल्क्य के दूसरे संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके बनाए हुए शतपथ ब्राह्मण की भी दो शाखाएं प्रचलित हैं, माध्यन्दिन शतपथ और कार्ण शतपथ। प्रथम में 14 और दूसरी में 17 कांड हैं। पहली शाखा का प्रथम कांड दूसरी शाखा का दूसरा और दूसरी शाखा का प्रथम कांड पहली शाखा का दूसरा कांड है। मध्य में किंचित वैपरीत्य भी है, अन्य कांडों में भी पर्याप्त वैषम्य है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के मंत्रों और शब्दों की व्याख्या करता है, यथा मेध्या वा आपह, वज्रो वा आपह, योषा वा आपह, ज्योतिर्वै हिरण्यम, अमृतम हिरण्यम। निरुक्तकार ने इस प्रकार की गुण कल्पना को भक्ति नाम दिया है। निरुक्त 7:24। या एक प्रकार की शब्द भक्ति कही जा सकती है। जैसे भक्ति कांड में प्रभु के नाना गुणों को लेकर उनकी स्तुति की जाती है, वैसे ही यहाँ शब्द की स्तुति है। स्तुति का अर्थ ही गुण कथन है, अतः गुण कल्पना की क्रिया में स्तुति का मूल अर्थ निहित है। शतपथ ब्राह्मण में यह गुण कथन बाहुल्य से पाया जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है, अतः उसके ब्राह्मण में भी याज्ञिक कर्म कांड की ही प्रधानता है। आधान, पुनराधान, अग्निहोत्र, आग्रायण, दाक्षायण यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, दर्श पौर्ण मासेष्टि, सोमयाग, वाजपेय याग, राजसूय याग, चयन याग, अश्वमेध, पुरुष मेध, सर्वमेध, साक मेध, प्रघात याग, महाह वीर्याग, दश रात्र, पितृमेध, शतरुद्रीय होम, पंच महायज्ञ आदि विविध प्रकार के यज्ञ विपुल विवरण के साथ इस ब्राह्मण में वर्णित हुए हैं। यज्ञ करने के समय व्रत का उपायन और विसर्ग भी किए जाते हैं। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को मन तथा शरीर दोनों से पवित्र बनने के लिए व्रत करना आवश्यक होता है। यज्ञ में प्रयुक्त पदार्थों को भी वह पवित्र रखता है और उनमें वेद त्रयी के यज्ञ भाव की कल्पना करता है। शतपथ ब्राह्मण के हविर यज्ञ नामक कांड के प्रारंभ में ही इस व्रतोपायन तथा पवित्रीकरण का उल्लेख हुआ है। भक्ति कांड के लिए ये दोनों ही कार्य सुदृढ़ भूमिका का निर्माण करते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं, व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष बीच बीच में आहवनीय तथा गर्भपति अग्नि के सामने खड़ा होकर जल का आचमन करे, इससे अंतःकरण में पवित्रता आती है। व्रती पुरुष सत्य बोले वह अरण्य में उत्पन्न अर्थात वन्य औषधि अथवा वृक्ष के फल अथवा व्रीही यवादि का भोजन करे। वह आवनीय अथवा गर्भपति आगार में भूमि पर सोवे, यही श्रेयस्कर उपचार है। जो व्रती बनता है वह देवों को प्राप्त करता है। व्रतम उपैष्यन अंतरेण आवनीयम च प्राण तिष्ठन अप उपस्पृशति सद्य अपह उपस्पृशति तेन पूतिरंतरतः एक एक स वै सत्यमेव वदेत 1-5 स वा आरण्यमेव अश्नियात या वा आरण्या औषधया यद्वा वृक्षम 1-10 स आहवनीयागारे वा एताम रात्रिम शहीत गार्हपत्यागारे वा देवान वा एष उपावर्तते यो व्रतम उपैति 1-11 देवों की प्राप्ति वस्तुतः दिव्य गुणों की प्राप्ति है, जिस पर आर्य संस्कृति में बहुत बल दिया गया है। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य ऊर्ध्वगमन करना है। विकास की स्थिति में ऊर्ध्वगमन दिव्यता की ओर चलना ही है। जिस प्रकार यज्ञ के मूल में इस पावन उद्देश्य को सन्निहित किया गया है, उसी प्रकार अन्य अनुष्ठानों के अंदर भी भक्ति मार्ग का भी यह परम पवित्र सोपान है। भक्त देवों के देव प्रभु के निकट पहुँचने का ही तो प्रयत्न करता है। अयम वै पवित्रम योयम पवते सोयम पुरुषे अंतः प्रविष्टः प्राणं च प्रत्यङ्गं च 3-2 यही पवित्र है जो पावन कर रहा है। वह पुरुष के अंदर प्रविष्ट है, सामने भी है और पीछे भी। जैसे प्राण अंदर जाता है, अपान बाहर निकलता है, ज्ञान सर्वांग में व्याप्त है, वैसे ही परम देव अंदर बाहर सामने पीछे सर्वत्र व्याप्त है। प्राण शरीर को पवित्र करता है, परम देव आत्मा को पवित्र करते हैं। अतः शतपथ ब्राह्मण की उक्ति भक्ति कांड के निकट ही है। वृत्रो हवा इदम सर्वम वृत्वा शिष्ये 3-4 तमिंद्रो जघान 3-5 जो आत्मा को चारों ओर से आच्छादित कर लेता है, उसे पाप से आवृत बनाता है, वही वृत्र है। इस उक्ति के अनुसार पांचों कोश ही वृत्र है, क्योंकि वही आत्मा को आच्छादित करने वाले वारक पर्दे हैं। इंद्र इस वृत्त के आवरण को नष्ट करते हैं। आत्म साक्षात्कार ही पांच कोशों को ऊपर पड़े रहने से हटाता है। यजमान जैसे जैसे यज्ञ को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे वह इस वारक वृत्त से प्राण पाता जाता है। भक्ति कांड भी इस रूप में यज्ञ ही है। शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है, वाट्रभ्नम वै पौर्ण मासम इंद्रो ही एतेन वृत्रम अहन अथ एत देव वृत्त हत्यम यत आमावस्यम 1-5-3-12 वृत्र सत के वारक को ही आमावस्य कहते हैं। इंद्र पूर्णिमा के द्वारा वृत्र का वध करता है। पूर्णिमा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को प्रकाशित करने वाली है, अतः इंद्र आत्मा जब 16 कलाओं से पूर्ण बन जाता है, तभी उसके ऊपर पड़े हुए समस्त आवरण जो अमावस्या के सदृश है नष्ट होते हैं। जब संपूर्ण चंद्रमा आकाश में चमकता है तब पूर्णिमा है, जब संपूर्ण रूप से छिप जाता है तब अमावस्या है। आत्मा जब अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तब मानो उसकी 16 कलाएं चमक रही हैं, परंतु जैसे जैसे ये कलाएं तिरोहित होती जाती हैं, वैसे ही वैसे वह अपने स्वरूप को विस्मृत करता जाता है। यहाँ तक कि अंत में सभी कलाएं तिरोहित हो जाती हैं और अमावस्या का वृत्र आकर उसे आच्छादित कर लेता है। उस समय आत्मा रूप चंद्रमा की कलाएं अस्त हो जाती हैं। वह अन्नाद नहीं रहता, अन्न बन जाता है। जो दूसरों के भोग की सामग्री बन गया वह अपने कर्तृत्व प्रभा से वंचित हो गया। उसमें वह चमक कहाँ जो भोजक में है, कर्ता में है। एष वै सोमो राजा देवा नाम अन्नम यत् चंद्रमा स यद्र एष एताम रात्रिम न पुरस्तात् न पश्चात् ददृशे तत् इमं लोकम् आगच्छति स इहेव अपश्य औषधीश्च प्रविशति स वै देवानां वसु अन्नम् हि एषाम् तद् यत् एष एताम् रात्रिम् इह अमावसति तस्माद् अमावस्या नाम शतपद 1535। यजुर्वेद का निम्नांकित पद यज्ञ और भक्ति दोनों पर घट सकता है। दैव्याय कर्मणे शुंधध्वम 1:13। देव कर्म के लिए अपने को पवित्र करो। यज्ञ भी दैव्य कर्म है और भक्ति भी। दोनों में प्रवेश करने से पहले मानव अपने को पवित्र करता है। पवित्र होने का अर्थ ब्राह्मी वृत्ति का संपादन है। इसी हेतु शतपथ ब्राह्मण का लिखता है ब्राह्मणों ही रक्षसाम अपहंता 1:4-6। अर्थात ब्राह्मण ही राक्षसों दुष्कर्मियों या पापों का विनाशक है। ब्राह्मण भी जब अपने आप को ब्रह्मरूप अग्नि में रख देता है तभी यह शक्ति उसे प्राप्त होती है। मूलतः यह शक्ति अग्नि की है, परम पवित्र प्रभु की है। इसी हेतु यजुर्वेद 1:18 में लिखा है अग्ने ब्रह्म ब्रह्मणीश्व हे अग्नि रूप परमात्मा इस ब्राह्मण को ग्रहण करो क्योंकि अग्नि भी रक्ष साम अपहंता। शतपथ ब्राह्मण में राक्षसों का एक विशेषण नाश दिया है जिसका अर्थ है अपनी और दूसरों की हानि या नाश करने वाले। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है वह आंतरिक रूप से अपनी ही हानि करता है। शतपथ 2:19 आप ही पाप विनाशक हैं। अग्नि ही पावक ईड्य शतपथ 1:3-3-38 आप ही पवित्र करने वाले और स्तुति करने के योग्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ की बड़ी महिमा है। लिखा है अयम महावीर्यो यो यज्ञम प्रापत जो यज्ञ को प्राप्त करता है वह महावीर्यवान है। फिर लिखा है ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः 1:4-2:12 ब्राह्मण इस यज्ञ के रक्षक हैं। वही इसको प्रकट करते हैं और वही इसका विस्तार करते हैं। यज्ञ में स्वस्त्ययन जप का भी विधान है। यह जप कल्याण पूर्वक यज्ञ का संपादन कराता है। जप करने वाला सब जगत के उत्पादक परम देव की सन्निधि में अपने को रखता है और कहता है यूयम अनुब्रूत यूयम यजत देव आप ही बताएं और आप ही इस अनुष्ठान को संपूर्ण करें। वसूनाम रातौ श्याम रुद्राणाम उर्वायाम स्वादित्या आदित्ये श्याम आने हस 1:4-2:17 हम वसु रुद्र और आदित्य रूप आप देव के संरक्षण में रहें। हमसे कभी पाप न हो, हम निष्पाप रहें। हम देवों के लिए प्रिय, ब्राह्मणों के लिए प्रिय तथा समस्त प्रजा के लिए प्रिय वाणी का उच्चारण करें। 1:4-2:18-19-20 यज्ञ के समय किसी से द्वेष करना पाप माना गया है। लिखा है तद्वै देवानाम आग आस कनीय इतनु अतो दूषण शतपथ 1:4-6:4 जो द्वेष करता है वह कनीय है, निकृष्ट है। वह देवताओं के प्रति पाप करता है। द्वेषी व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट नहीं हो पाती, वह दिव्यता से वंचित हो जाता है। फिर लिखा है यज्ञेन ह वै देवा इमाम जितिम जिज्ञुः 1:5-1:2 यज्ञ के द्वारा ही देव इस जीत को जीतते हैं। देवों की दिव्यता द्वेष भाव पर विजय प्राप्त करने में ही निहित है। भक्ति कांड में भी द्वेष पर विजय प्राप्त करने की परम आवश्यकता है। भक्त के पास यह अमूल्य साधन के रूप में रहती है। शतपथ में द्विशंसम भ्रातृव्यम हनानि वाक्य यज्ञ के प्रकरणों में कई बार आया है। उसका भाव यही प्रतीत होता है कि द्वेष आत्मा का भ्रातृव्य है, शत्रु है। इसका वध करना ही श्रेयस्कर है। द्वेष असुर है, प्रेम देव है। दोनों ही प्रजापति की संतान है और दोनों को ही पिता का दाय भाग प्राप्त हुआ है। अतः एक दूसरे का भ्रातृव्य है। भक्ति कांड की पूजा पद्धति द्वेष भाव को भी दूर कर देती है। लिखा है ते अर्चंत श्राम्यंत चेरु 1:5-1:3 मानव जब परम देव की अर्चना करता है और पर्याप्त परिश्रम करता है तब उसे द्वेष पर विजय प्राप्त होती है। पवित्र प्रभु तक पहुँचने के ये साधन अपना विशेष मूल्य रखते हैं। अर्चना भक्ति का ही अंग है। सह अग्नि रुवाच मय्येव वह सर्वेभ्यो जुहवतु तद्वोहम मई आ भजामी इति तस्मात् अग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुहवति तस्मात् आहु अग्नि ही सर्वा देवता 1:5-20 अथ सोम उवाच मामेव वह सर्वेभ्यो जुवतु तद्वोहं मयि आभजामि इति तस्मात् सोमं सर्वेभ्यो जुहवति तस्मात् आहु सोमः सर्वा देवताः 1:5-2:11 जैसे अग्नि में समस्त दिव्य शक्तियां निहित है वैसे ही सोम में भी जो अग्नि का तेज धारण करने के पश्चात सोम की सौम्यता को धारण नहीं करता वह एक प्रकार से अधूरा है। यज्ञ में अग्नि और सोम दोनों का जोड़ा है, दोनों को साथ साथ आहुतियाँ दी जाती हैं। भक्त भी अग्नि और सोम दोनों को अपनाता है, वह अग्नि तत्व के द्वारा असत पर विजय प्राप्त करता है और सोम तत्व के द्वारा सत का आधान करता है। सोम ब्राह्मणों का ब्राह्मी प्रवृत्ति संपादन करने वालों का राजा है, इसकी शोभा विराजता ब्राह्मी वृत्ति अर्थात सत के धारण करने में ही है। भक्ति इसी सतो गुण पर आधारित है। आत्मा में जब अग्नि और सोम दोनों तत्वों का समावेश हो जाता है तब वह इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान बनता है और उसमें निखिल दिव्य शक्तियाँ आकर निवास करने लगती हैं। पर जैसा हम भक्ति के विवेचन में लिख चुके हैं, भक्त इस ऐश्वर्य से, ईश्वर भाव से अथवा दैव संसर्ग से भी ऊपर उठता है, दिव्यता की तीन सर्वोच्च कोटियों ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्तरों से भी ऊंचा जाता है। अतः हमारी समझ में यज्ञ भी भक्ति का एक मुख्य अंग माना जाना चाहिए, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ रूप साधन के द्वारा जिस साधक की प्राप्ति कही गई है वह द्यौ दिव्य शक्तियों के धाम से भी ऊपर है। यज्ञेन वै देवा दिवम उप उदक्रामन 1:6:11 यज्ञ से देव द्यौ को भी निकट से उल्लंघन कर जाते हैं, द्यौ के पास पहुँच कर वे वही नहीं रम जाते, उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं। भक्ति का मार्ग प्रियत्व अथवा प्रेम का मार्ग है, श्रद्धा इसका मुख्य अंग है। शतपथ ब्राह्मण 2:3-2:34 में लिखा है अहम वह प्रियो भूयासम इत्येव एतदाह। यह देवों का प्रेम भाजनत्व कैसे प्राप्त होगा? याज्ञवल्क्य यजुर्वेद की ऋचा इसके पूर्व उद्धृत करते हुए लिखते हैं उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी 3:22 नमः एव अस्मा एतत् करोति यथा एनम न हिंस्यात्। जिससे देवों का प्रेम भाव साधक या याज्ञिक के प्रति बना रहे इसी हेतु प्रति प्रातः और सायं साधक प्रभु के आगे प्रणत होता है। प्रणति नमस्कार का भाव मानव को अहंता और दंभ से बचाता है तथा हिंसा वृत्ति से दूर रखता है। इस प्रकार उसके अंदर निराभिमानिता जो दैवी संपदा है बनी रहती है। याज्ञवल्क्य ने इस स्थल पर प्रार्थना विषय और भी कई मंत्र उद्धृत किए हैं। यज्ञ में पवित्र बनने की प्रार्थना अनेक बार की गई है। याज्ञवल्क्य यजुर्वेद 4:4 की ऋचा को उद्धृत करते हुए लिखते हैं चित पतिर मा पुनातु प्रजापतिर वह चित पति प्रजापतिर मा पुनातु चित पति प्रजापति ही है वह मुझे पवित्र करे। वाक्पति प्रजापति है वह मुझे पवित्र करे। सबको उत्पन्न करने वाला सविता देव मुझे पवित्र करे। मेरी पवित्रता में किसी प्रकार का छिद्र या दोष न रहे 3:2:3:22 इसी प्रकार यज्ञ का व्रत लेने पर याज्ञिक प्रार्थना करता है ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्ष प्रतवः ते नो अवंतु ते न पान्तु तेभ्य स्वाहा यजुर्वेद 4:11 मनन से उत्पन्न मनन के साथ संयुक्त यज्ञ करने में दक्ष जो देव हैं वे हमारी रक्षा करें हमें पवित्र करें उनके लिए मैं त्याग व्रत की दीक्षा लेता हूँ 3:2:1:18 प्रार्थना की भाव मयिता से याज्ञिक का शरीर यज्ञ हो जाता है इयम ते यज्ञिया तनु हूँ यजुर्वेद 4:13 अथ यद्दीक्षितः अवृत्यम वा व्याहरति क्रुध्यति वा तन्मिथ्या करोति व्रतम प्रमीणाति अक्रोधो हेव दीक्षितस्य 3:2:1:24 दीक्षित होकर जो यज्ञ करता व्रत विहीन वा व्रत बाह्य बातें करता है या क्रोध करता है वह व्रत का विनाश करता है। दीक्षित को अक्रोध होना चाहिए। भक्त भी भक्ति की दीक्षा में इसी पथ का पथिक होता है। शतपथ 4:2:1 के आरंभ में आत्मा का वर्णन है आत्मा ह वा अस्य आग्रयणः सो अस्य एष सर्वमेव सर्वम ही अयम आत्मा तस्माद् अन्या गृह्णाति पूर्णम गृह्णाति सर्वम वै पूर्णम सर्वमेष ग्रह तस्माद् पूर्णम गृह्णाति विश्वेभ्यो देवेभ्यो गृह्णाति सर्वम वै विश्वे देवा सर्वमेष ग्रह तस्मात् विश्वेभ्यो देवेभ्यो गृह्णाति सर्वेषु सवनेषु गृह्णाति आत्मा वा आग्रयण आत्मनो वा इमानि सर्वाणि अंगानि प्रभवन्ति। भक्त याज्ञिक की भांति आत्मा को सबसे आगे रखता है। उसे यह समग्र प्रसार आत्मा का या आत्मा से ही निकला हुआ दिखाई देता है। अतः वह इन सब के द्वारा आत्मा को ही ग्रहण करता है। आत्मा से यह जगत पूर्ण हो रहा है अतः वह पूर्ण रूप से इसे ग्रहण करता है। विश्व देव उसी आत्मा के स्फुलिंग है अतः वह निखिल दिव्य शक्तियों के द्वारा उसे ग्रहण करता है। वह सभी सवनों यज्ञ अवस्थाओं में उसे ग्रहण करता है। आत्मा ही सब में प्रमुख है, आत्मा से ही ये समस्त अंग उत्पन्न होते हैं। 4.2.2.1 में लिखा है, आत्मा अनिरुक्त है, यह प्रशंसनीय है, अजर और अमर है, अतः इसे ग्रहण करना चाहिए। समस्त उक्तों अर्थात कथनीय साधनों द्वारा इसे प्राप्त करना चाहिए। 4.2.3.21 में गायत्री की प्रशंसा की गई है और लिखा है, एवं इयम गायत्री जयमानाय सर्वान् कामान् दोहाता इति तस्माद् वै गोपायन्ति। गायत्री का जाप गुप्त भाव से चुप रहकर किया जाता है। यह गायत्री यजमान या जपकर्ता को समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। गायत्री कामधेनु है जो अपने समस्त वस्त्र रूप साधकों को दूध पिलाकर कामनाओं की वर्षा कर सुरक्षित रखती है। 4.2.6.12 में ओम का वर्णन है, यह जो द्यावा पृथ्वी के बीच में सरसता है वह कहाँ से आई। यह समस्त प्रजा जिससे रसवती है, जिसके जीवन से जीवन ग्रहण करती है, वह कौन है। स वै ओम वह ओम है, तद भी सत्यम वह निश्चित रूप से सत्य है, तद देवा विदु उसे देव जानते हैं, तस्मात ओम प्रतिगृणियात, अतः ओम की ही स्तुति करनी चाहिए। 4.5.8 के छठे और आठवें प्रकरण में ब्रह्मा और मैत्रा वरुण के मंत्र जाप का उल्लेख है। कांड 8 प्रपाठक 2 के छठे ब्राह्मण में प्रजापति समस्त भूतों को पाप रूप मृत्यु से मुक्त करके संतानोत्पत्ति की कामना करता है और प्राणों से कहता है, तुम्हारे साथ इन प्रजाओं को उत्पन्न करूं। प्राण बोले, हम लोग किसके द्वारा स्तुति करेंगे। प्रजापति ने कहा, हम और तुम दोनों ही स्तुति के साधन होंगे। इसके बाद वाणी प्राण मन शीर्ष प्राण नव प्राण अंगुली बाहु पाद आदि अनेक अंगों से स्तुति की जाने का उल्लेख है। अंत में 37 अंगों से जो स्तुति की गई है उसे मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। 37 अंगों में 10 हाथ की अंगुलियों 10 पैर की 10 प्राण 2 प्रतिष्ठा और 1 आत्मा का परिगणन है। यही स्तोम सर्वश्रेष्ठ है, इसी से प्रजापति परमेष्ठी अधिपति बनता है। परमे निरतिशय स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो सबसे उत्कृष्ट स्थान में स्थित होता है उसे परमेष्ठी कहते हैं। सर्वांग समर्पण द्वारा जो स्तुति की जाती है उसका यह महत्व है। शतपथ ब्राह्मण के भक्ति संबंधी जो वाक्य ऊपर उद्धृत किए गए हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह ब्राह्मण भक्ति के कतिपय अंगों का विशद वर्णन करता है। द्वेष से दूर रहना, सबसे प्रेम करना, दिव्यता और पवित्रता की ओर प्रयाण करना, ओम तथा मंत्रों का जाप करना, व्रत परायण बनना, आत्म तत्व को प्राप्त करना, यज्ञ करना, क्रोध न करना आदि ऐसे साधन हैं जो भक्ति के अनिवार्य अंग कहे जा सकते हैं। याज्ञिक कर्मकांड का विस्तृत विवरण देते हुए भी शतपथ ब्राह्मण इस प्रकार भक्ति कांड की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता है। आर्षेय ब्राह्मण, सामवेद के 8 ब्राह्मणों में आर्षेय ब्राह्मण की गणना है। किसी किसी के मत से प्रौढ़ षड्विंश और मंत्रोपनिषद तीनों मिलकर छांदोग्य ब्राह्मण कहलाते हैं, जिसमें 40 प्रपाठक हैं। सामवेदी आर्षेय दैवत संहितोपनिषद और वंश नाम के 5 ब्राह्मण सामवेदीय अनु ब्राह्मण कहलाते हैं। आर्षेय ब्राह्मण के अध्ययन से गायत्र गेय आरण्य महानाम सामू के नामों का ज्ञान होता है। ऋषि और देवता संबंधी ज्ञान भी इसमें निहित है। इसको बिना पढ़े सकल सामवेद का ज्ञाता भी ऐसे वैद्य के समान है जो तृण गुल्मादि का ज्ञान नहीं रखता। इससे प्रथम प्रपाठक में ओम की महिमा इस प्रकार वर्णित हुई है, अर्थातः उपदेश ओम इति एतत् परमेष्ठिनः प्रजापत्यस्य साम परमेष्ठिनो वा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो वा ब्रह्मवाचो वा सत्यम साम स्वर्गस्य वा लोकस्य द्वार विवरणम देवानाम वा ओकस्त्रयस्य वा वेदस्य आप्यायनम। सारणाचार्य इसके भाष्य में लिखते हैं, अथ प्रणवस्य वेद त्रय सार तत्वात् वेदांत रूप सामादौ प्रयुक्त व्यत्तत्वात् ओम इति उद्गायति इति ओम इत्येतत् प्राजापत्यस्य प्रजापतिः हिरण्यगर्भः तत्पुत्रस्य परमेष्ठिना संबंधी नाम तीन दृष्टत्वात् परमेष्ठी साम इति अन्वर्थ संज्ञा इत्यर्थः अथवा ब्राह्मस्य ब्रह्म सर्व जगत कारणम परमात्मा तत्पुत्रस्य परमेष्ठिनः स्वभूतम साम अथवा ब्रह्मवाक ब्रह्म इव वाक तस्य शब्द ब्रह्म संबंधी एवं बहुनाम ऋषीणाम संबंध प्रतिपादनात् एषाम अन्यतमस्य नामना किं तदेतत् प्रणवाख्यम साम इत्यर्थः। प्रणव वेद त्रयी का सार है। वेदों का अंतिम रूप साम वेद है, उसके आदि में प्रयोक्तव्य होने से ओम ऐसा गाया जाता है। प्रजापति हिरण्य गर्भ है, अतः उसका पुत्र परमेष्ठि प्रजापत्य कहलाता है। उससे संबंधित साम ओम है, अथवा सर्व जगत के कारण परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। उसके पुत्र परमेष्ठि को ब्रह्म कहा जाता है, उसी का स्वभूत साम ओम है। अथवा ओम ब्रह्म का ही साम है, अथवा ब्रह्म का अर्थ वाणी है, ब्रह्म की ही भांति उसकी वाणी है। अतः ओम शब्द ब्रह्म संबंधी साम है। इस साम की संज्ञा प्रणव है। यही साम व्याहृतियों में गाया जाता है, इसी को सत्य साम कहते हैं। व्याहृतियाँ ओम की ही व्याख्या करती हैं। यह ओम साम स्वर्ग का द्वार है, ज्योति है। भू भुव स्व तीन महाव्याहृतियाँ त्रयी विद्या का सार है। समस्त वेदों द्वारा प्रतिपाद्य अग्नि आदि देव इन्हीं महाव्याहृतियों के रूप है। उन समस्त देवों का ओक निवास स्थान ओम साम है। यह वेद का अप्यायन अर्थात प्रवर्धन है। आर्षीय ब्राह्मण के अंत में देव व्रत, सोम व्रत, दीर्घ तमस व्रत, पुरुष व्रत, दिशा व्रत, कश्यप व्रत, आदित्य व्रत आदि व्रत दिए गए हैं। साम वेदीय व्रत अन्य व्रतों में विशिष्ट है, इसका संबंध गानों से है। आदित्य व्रत वह साम है जो शांडिली पुत्र के मत से 21 बार और वार्षायणी पुत्र के मत से 22 बार गाया जाता है। कश्यप व्रत दशानुगान का होता है। पुरुष व्रत दो प्रकार का है, पंचानुगान और एकानुगान। दिशा व्रत दशानुगान होता है। साम वेद की गीतिकाएं औ, होई, हुम्मा आदि स्वरों में गाई जाती हैं, जिन्हें स्तोम कहते हैं। ये 13 प्रकार के हैं। हाऊ मनुष्य लोक का वाचक, हाई वायु लोक, अथ चंद्र लोक, इह आत्मा, ई अग्नि रूप, उ सूर्य रूप, ए आवाहन बोधक, औ होई विश्व देव, हिम प्रजापति स्वरूप, स्वर प्राण रूप या अन्न रूप, वाक विराट रूप और हुम ब्रह्म रूप। 1, 13, 1, 2, 3 ये स्वर कहीं मंद्र, कहीं उच्च और कहीं सम होते हैं। विशेष ध्वनियों में लपेटा हुआ गान मन को आकर्षित कर लेता है। गान के साथ एक हुआ मन अपनी दौड़ छोड़कर एक तांता में रम जाता है। चित्त की वृत्तियाँ अपने आप निरुद्ध हो जाती हैं और इस प्रकार उनके एक स्थान पर केंद्रित हो जाने से अद्भुत शांति प्राप्त होती है। जगत का जंजाल तभी तक कष्टप्रद है जब तक मन उसमें फंसा हुआ है। जब मन इस जाल से निकल आया तो दुख कहाँ, दुख दाह से बचा हुआ मन ही शांति का हेतु है। साम वेद इसी हेतु समस्त वेदों का रस कहलाता है, क्योंकि यह मन को सरस संगीत की लहरियों में डुबाकर रस रूप ब्रह्म के साथ तद्रूप कर देता है। इसलिए इसे भक्ति कांड का वेद भी कहते हैं। व्याहृतियों में स्व के साथ इसका संबंध है, जिसका अर्थ आनंद होता है। भक्ति कांड का भी आनंदमय कोष से संबंध है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। जिस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद तत्पद ब्राह्मण का एक भाग है और यजुर्वेदीय है, उसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है और सामवेदीय है। इस उपनिषद के अनुसार ओम अविनिश्वर उद्गीत है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। ओम की इतनी स्तुति गीतिका क्यों है, इसका उत्तर देते हुए छांदोग्य के ऋषि कहते हैं, इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋचा है, ऋचाओं का रस साम है और साम का रस उद्गीत है, प्रणव या ओम का गान है। यह रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है, परम और परार्ध्य है, परम ब्रह्म परमात्मा का धाम है। छांदोग्य 1, 2, 3 ओम से ही त्रय विद्या प्रकट हुई है, इसलिए ओम ऐसा सुनाया जाता है, ओम ऐसा कहा जाता है और ओम ऐसा गाया जाता है। इसी अक्षर ओम की महिमामयी रसधारा से साधक की उन्नति और वृद्धि होती है। ओम का श्रवण संशन और गान क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद से संबद्ध है। ओम में ऋग और साम वाणी और प्राण दोनों संयुक्त है। आत्मान मंततः उपसृत्य सुवीत कामम ध्यानम ध्यान अप्रमत्तो अम्याशो ह यदस्मै स काम समृद्धे यत काम सुवीत इति यत काम सुवीत इति 1, 3, 12 अंत में प्रमाद रहित होकर अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए प्रभु के समीप ध्यान द्वारा तन्मय भाव से स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार स्तुति करने वाला साधक जिस कामना से स्तुति करता है वह कामना पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। यह दावा ऋचम आपनोति ओम इत्येव अति स्वरति एवं साम एवं यजु एष उ स्वरो यत एतत् अक्षरम एतत् अमृतम अभयम तत् प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन 4 स य एतदेवं विद्वान अक्षरं प्रणौति एतदेव अक्षरं स्वरं अमृतं प्रविशति तत् प्रविश्य यदमृता देवा तदमृतो भवति। प्रथम से चतुर्थ खंड। जो व्यक्ति ऋग्वेद को जान जाता है वह उच्च स्वर से ओम का उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामवेद और यजुर्वेद के गाता ज्ञाता ओम का ही गान करते हैं। इसे सिद्ध होता है कि जो यह ओंकार रूप अक्षर परमात्मा है वही ऊपर कहा हुआ स्वर है, वही मृत्यु से पार करने वाला अभय धाम है। उसी का आश्रय लेकर देव अमर और निर्भय हुए। ओंकार को इस रूप में जानकर जो भक्त ओंकारवासी अवेन्द्रेश्वर प्रभु की स्तुति करता है और एकमात्र इसी अमृत रूप अभय तथा अविनाशी परमात्मा के स्वरूप भूत इस ओम स्वर में प्रविष्ट हो जाता है, उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह इस साधना द्वारा उसी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है जिसे देवताओं ने प्राप्त कर लिया था। अर्थ खलु यह उद्गीत स प्रणव, यह प्रणव स उद्गीत इति असौ वा आदित्य, उद्गीत एष प्रणव ओम इति हेष स्वरण नेति। 1.5.1। निश्चित रूप से जो उद्गीत है ये परम देव है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार नाम और नामी का अभेद है। यह जो आदित्य है वह भी उद्गीत है और वही प्रणव भी है। अर्थात जो साधक आदित्य में परमात्मा और उनके वाचक ओम की भावना करता है वह ओम स्वर का उच्चारण करता हुआ वही पहुँच जाता है, सफल काम होता है। एक बार कौशिकी ऋषि ने सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का भलीभांति गान या जप किया था तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अन्य जो कोई साधक इसी प्रकार ओम का जाप करेगा उसे भी पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार प्राण हृदय आदि को लक्ष्य करके ओम का जाप किया जा सकता है। सांदोग्य के इस स्तर पर उद्गीत की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। यथा उत्थान या प्राण का वाचक है, गी वाणी का द्योतक है, और थ अन्न का स्थिति का बोधक है। उत स्वर्ग है तो गी अंतरिक्ष है, और थ भूलोक है। उत आदित्य है तो गी वायु है, और थ अग्नि है। उत सामवेद है तो गी यजुर्वेद, और थ ऋग्वेद है। ओंकारवाची प्रभु की जो इस प्रकार उपासना करता है उसके लिए वाणी के निखिल रहस्य प्रकट हो जाते हैं, वेदों का आशय स्पष्ट हो जाता है, और वह भोग सामग्री तथा भोगने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। 1.3.6.7। इसी के आगे साधक को 7 बातें स्मरण रखने का आदेश दिया गया है जो इस प्रकार है। 1. जिस साम के द्वारा साधक स्तुति करना चाहता है उसे याद रखे। 2. वह साम जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो उस ऋचा को ध्यान में रखे। 3. जिस ऋषि ने उस ऋचा का साक्षात किया है उसका स्मरण करे। 4. साम गान द्वारा जिस देवता की स्तुति करनी हो उसे स्मरण रखे। 5. वह ऋचा जिस छंद में है उस छंद को याद रखे। 6. साम वेद के जिस स्तोत्र समूह से स्तुति करनी है उसे ध्यान में रखे। और 7. जिस दिशा की ओर मुख करके स्तुति करनी है उस दिशा का भी ध्यान रखें। ये बातें तांत्रिक साधना में और भी अधिक विकसित हुई हैं। वज्र यानी बौद्ध ही नहीं शक्ति के उपासक शाक्तों में भी इनका विकास दिखाई देता है। इसका मूल बीज इसी प्रणव या उद्गीत की उपासना विधि में सुरक्षित है। छांदोग्य के इस स्थल की समता आशय ब्राह्मण की इन पंक्तियों से की जा सकती है। यो ह वा अविदित आशय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्षति गर्तं वा पतति प्रवामीयते पापी यान भवति यातयामानि अस्य छन्दांसि भवन्ति। आचार्य सायण ने इसके भाष्य में किसी स्मृति का निम्नांकित श्लोक उद्धृत किया है। अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं विनियोगकं यो अध्यापयेज्यते द्वापि पापी यान जायते तु सः। जो व्यक्ति छंद ऋषि दैवत विनियोग आदि के बिना जाने ही मंत्र का जाप करता है या अध्यापन करता है वह वृक्ष योनि को प्राप्त करता है या गर्त में गिरता है वह नष्ट हो जाता है, पापी बनता है, उसके छंद बासी और फीके हो जाते हैं। इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि जो उपर्युक्त बातों को जानकर जाप करता है वह स्वर्ग यश पुण्य पुत्र पशु ब्रह्म वर्चस्व आयु अन्न प्राक प्रात राशिक आदि सब कुछ पा जाता है। वह परलोक में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक एक एक ऋषि का अतिथि बना हुआ अभिनंदित पूजित और प्रतिनंदित होता है। इस लोक में वह पंक्ति पावन और तेजस्वी बनता है। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत प्रणव या साम की उपासना के अनेक प्रकार वर्णित हुए हैं। साम का अर्थ साधु या शुभ होता है। सामोपासना साधु शुभ या कल्याण करने वाली है। इसमें हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार और निधन 5 विधान है। प्रस्ताव या स्तुति पाठ का संबंध प्राण से, उद्गीत या उद्गान का संबंध सूर्य से, और प्रतिहार का संबंध अन्न से है। हिंकार प्रारंभिक स्वर भरना है और निधन गान का अंत है। साम सा और अम से मिलकर बना है। सा पृथ्वी है तो अग्नि अम है, अंतरिक्ष सा है तो वायु अम है, द्यूलोक सा है तो सूर्य अम है, नक्षत्र मंडल सा है तो चंद्रमा अम है। साम ऋक् में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के विचार ही संतनित होकर सामवेद की गीतिकाएं बन जाती हैं। सामवेद उपासना का वेद कहा जाता है। इसके प्रारंभिक मंत्र कतिपय सृष्टि विद्या संबंधी मंत्रों को छोड़कर प्रायः सबके सब उपासना से संबंध रखते हैं। सामवेद के कई ब्राह्मण हैं, परंतु हमने यहाँ केवल आशय ब्राह्मण को लेकर ही भक्ति के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। आशय ब्राह्मण प्रणव ओंकार तथा उद्गीत की मुक्त कंठ से स्तुति करता है। उसने उद्गीत की उपासना विधि का भी उल्लेख किया है। इस विधि के अनुकूल जाप करने वाला लोक तथा परलोक दोनों में समादृत होता है और उस परम सत्ता के समीप बैठने का श्रेय भी उसे मिलता है। साधक का ज्ञान जब भावना का रूप धारण करता है और उसमें अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने की आकांक्षा जागृत होती है, तो उसके आंतरिक रूप में संकोच के स्थान पर विस्तार आ जाता है। राग में भी कुछ इसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। भक्ति भावना इसी हेतु संकोच से हटकर विशाल और उदार रूप धारण करती है। सामवेद जो ऋग्वेद की ऋचाओं से कई गुना बढ़कर बोला जाता है और उसका एक एक शब्द दूर दूर तक अनेक वर्णों और मात्राओं में फैल जाता है, उसका यही कारण विशेष है। ज्ञानी के समक्ष भक्ति की महत्ता भी इसी हेतु अधिक है। गोपत ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद के साथ है। जिस प्रकार अथर्व वेद के संबंध में अन्य वेदों की अपेक्षा निर्माण की तिथि परवर्ती काल की मानी जाती है, उसी प्रकार गोपत ब्राह्मण को भी विद्वान अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात बना हुआ मानते हैं। इस ब्राह्मण के पूर्व भाग प्रपाठक एक कंडिका 29 के अंत में निम्नांकित शब्द आए हैं, एतस्मात् व्यासः पुरोवाच। ये शब्द सिद्ध करते हैं कि इस ब्राह्मण का निर्माण व्यास के बहुत बाद हुआ है। इसी प्रपाठक की कंडिका 31 में मौद्गल्य और मैत्रेय का वार्तालाप दिया है। श्रीमद् भागवत में भी ये दोनों नाम आते हैं और बौद्ध धर्मावलंबियों के तो ये विशेष परिचित नाम है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस ब्राह्मण की रचना श्रीमद् भागवत के रचना काल के आसपास ही हुई होगी। प्रथम प्रपाठक की कंडिका 25 में पौराणिक देवत्रयी अपने विशिष्ट रंगों के साथ विद्यमान हैं, जिसमें ब्रह्मा का रंग लाल, विष्णु का काला और ईशान अर्थात महादेव का कपिल वर्ण वर्णित है। संभव है ईशान को सर्व देवता के साथ मिलाकर उनका रंग शुद्ध स्फटिक के समान आगे चलकर कल्पित कर लिया गया हो। महादेव को शुद्ध भस्मावृत तथा कांचन सन्निप भी कुछ स्थानों पर कहा गया है। नैमिषारण्य के 88 सहस्त्र ऋषियों के नेता शौनक भी प्रपाठक 3 कंडिका 8 में विद्यमान है। उत्तर भाग के प्रपाठक 1 की कंडिका 14 में मांस भक्षण का निषेध किया गया है, जो उन दिनों के भागवत प्रभाव को भी सूचित कर सकता है। भागवतों के नारायण 5-11 भी इसमें विद्यमान है। उत्तर भाग के प्रपाठक 3 की कंडिका 14 और 15 में इंद्र, सूर्य और अग्नि की स्तुतियां भी पाई जाती हैं। गोपद ब्राह्मण में अन्य ब्राह्मणों की भांति वेद और यज्ञ के विषय ही प्रमुख रूप से वर्णित हुए हैं। गोपद ब्राह्मण के 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 5 और उत्तर में 6 प्रपाठक हैं। अथर्व वेद का ब्राह्मण होने के कारण उसकी दादभिक्री, पवमानी, आहनस्या, आदित्या, आंगिरसी, इंद्रा, बारहस्पत्य आदि ऋचाओं का विशेष प्रयोग भी इसमें उल्लिखित है। उत्तर भाग के प्रपाठक 6 में बुडिल और गोष्ठ जैसे मुनियों के नाम सूचित करते हैं कि इस ब्राह्मण के निर्माता का संबंध विदेशों के भी साथ था। यज्ञ संबंधी विवरणों के साथ इस ब्राह्मण ने गायत्री का जाप, ओम को सहस्त्र बार जपने की महिमा तथा प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करने का आदेश दिया है। भगवान में विश्वास रखने वालों का महत्व यज्ञों के अंदर भी आत्मिक यज्ञ से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति प्रपाठक 5-8, स्तोत्रों द्वारा मृत्यु का पराभव उत्तर 3-12 आदि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें भक्ति कांड के अंतर्गत स्थान प्राप्त हो सकता है। ओम का सहस्त्र बार जाप, तत् एतत् अक्षरम ब्राह्मणो यम कामम इच्छेत त्रिरात्रो पोषितः प्रांग मुखो वाग्यता बर्हिषी उपविश्य सहस्र कृत्वा आवर्तयेत सिद्ध्यन्ति अस्य अर्थः सर्व कर्माणि च 1-22। जो इस एकाक्षर अविनाशी ओम नाम की ऋचा का एक सहस्त्र बार कुशासन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख किए वाक संयम सहित तथा 3 रात्रि तक उपवास करता हुआ जाप करता है, उसके समस्त अर्थ और काम सिद्ध होते हैं। ओम का जाप असुरत्व से देवत्व की रक्षा करता है। ये देवा देव यजनस्य उत्तरार्धे असुरै संयता आसन तान ओंकारेण अग्नि धिया देवा असुरान पराभावयन तत् यत् पराभावयन्त तस्मात् ओंकार पूर्व उच्यते यो हवा एतम् ओंकारम् न वेद अवशः स्यात् इति। अथ य एवं वेद ब्रह्म वश स्यात् इति तस्मात् ओंकार ऋगि ऋग भवति यजुषि यजु साम्नि साम सूत्रे सूत्रम ब्राह्मणे ब्राह्मणम श्लोके श्लोकः प्रणवे प्रणवः 1-23। वे देवता देव यजन के उत्तरार्ध में असुरों द्वारा घेर लिए गए, तब देवताओं ने यज्ञ वेदी से ओंकार के द्वारा ही उन असुरों को पराभूत किया, क्योंकि असुर ओंकार के द्वारा ही पराभूत किए गए। अतः सर्वप्रथम ओंकार का ही उच्चारण करना चाहिए। जो इस ओंकार को नहीं जानता वह प्रभु का प्यारा नहीं बनता, परंतु जो इसे जानता है वह प्रभु का प्यारा बनता है। इसलिए ओंकार को ऋचाओं को ऋचा, यज्ञों का यज्ञ, साम का साम, सूत्र का सूत्र, ब्राह्मण का ब्राह्मण, श्लोक का श्लोक और प्रणव का प्रणव कहा जाता है। ओंकार के जाप का इसी हेतु इतना महत्व आर्य ऋषियों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर सका है। इसके आगे कंडिका 28 के निम्नांकित शब्द भी इसी भाव का समर्थन करते हैं। स ओम एभ्य उपनीय प्रोवाच मामिकाम एव व्याहृतिम आदितः आदितः शृणुध्वम तस्मात् ब्रह्मवादिनः ओंकारम आदितः कुर्वन्ति। उपनीत हुए ब्रह्मवादियों से ओंकार बोला, मेरी ही व्याहृति को प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में बोलो। इसी हेतु ब्रह्मवादी ऋषि ओंकार का उच्चारण सभी कार्यों के आदि में करते हैं। कंडिका 30 में ओंकार को अध्यात्म, आत्म भैषज्य और आत्म कैवल्य कहा गया है। ओम के जाप का फल मोक्ष है, ऐसा सभी मनुष्यों ने स्वीकार किया है। प्रपाठक 2 कंडिका 17 में लिखा है, उपयज्ञः आत्रेयः किं भवति, अर्थात यज्ञ रूप पूजनीय प्रभु के पास आया हुआ आत्रेय अर्थात ब्राह्मण क्या होता है, क्या फल प्राप्त करता है। आदित्यम ही तमो जग्राह तत् अत्रि अपनु नोद, आदित्य रूप प्रभु के उपासकों के मार्ग में तम रूप विघ्न आते हैं तो नित्य रक्षक परमात्मा देव उन विघ्नों को मार्ग से हटा देते हैं। प्रभु का भक्त अपना कुशल क्षेम प्रभु पर छोड़ देता है, अतः विघ्न बाधाएं उसे मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। प्रपाठक 5 की कंडिका 12, 13 और 14 में प्रातः माध्यान दिन और तृतीय सवन की कुछ स्तुतियां दी हुई हैं, जो विशुद्ध रूप से भक्ति परक हैं। इन्हें हम नीचे उद्धृत करते हैं। श्योनो असि गायत्रत छंदा अनुत्वा आरभे स्वस्ति मा संपारय, हे सोम अपनी शक्ति से समवेत परमात्मन आप गायत्र छंद अर्थात गेय अथवा स्तुति योग्य और आनंद पूर्ण है। आप परम ज्ञान रूप सामर्थ्य रखते हैं, मैंने आपका ही सहारा लिया है, आप कल्याण के साथ मुझे पार लगा दें। अथ माध्यन्दिने पवमाने वाचयति सम्राट असी त्रिष्टुप छंदा अनुत्वा आरमे स्वस्ति मा संपारय, सम्यक प्रकार से प्रकाशमान प्रभो तुम दैहिक दैविक एवं भौतिक तीनों तापों से हम सबकी रक्षा करने वाले हो। हम अपनी वाणी मन और आत्मा तीनों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। आप आनंद धाम हैं, मैंने आपकी ही शरण ग्रहण की है, आप ही मुझे कल्याण पूर्वक इस भव सागर से पार करें। अथ आर भवे पवमाने वाचयति स्वरो असि गयो असि जगत छंदा अनुत्वा आरभे स्वस्ति मा संपारय, प्रभु आप स्वर हैं, आप यही नहीं द्यूलोक तक संचरण कर रहे हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आपसे बढ़कर गए अर्थात सर्वत्र पहुंचा हुआ और कोई भी नहीं है, आप ही समग्र विश्व के प्राणाधार हैं, आप अनंत आनंद वाले हैं, मैंने आपका ही अवलंबन किया है, आप ही मेरा कल्याण करें, मुझे पार लगाएं। शतपथ 12, 2, 1, 3, 4, 5 में भी कुछ शब्दांतर के साथ ये स्तुतियां दी हुई हैं। उत्तर भाग प्रपाठक 3 कंडिका 11 में लिखा है, अमृतम वै प्रणवः अमृते नैव तत् मृत्युम तरति, ब्रह्म वै प्रणवः ब्रह्मणा एव अस्मै तत् ब्रह्म उपसंतनोति। प्रणव सदैव अभिनव बना रहने वाला ओंकार अमृत है, इसी प्रणव ओम के द्वारा साधक मृत्यु को पार करता है। प्रणव ओम सबसे बड़ा है, इसी महान ब्रह्म के द्वारा प्रभु का ज्ञान चारों ओर फैलता है, अर्थात ओंकार समस्त ज्ञानों की निधि और स्त्रोत्र है। प्रजा काम तथा प्रतिष्ठा काम मानव प्रणव की ही उपासना करते हैं। उत्तर भाग प्रपाठक 5 कंडिका 7 में सामवेद को सब वेदों का रस कहा गया है। सामवेद उपासना कांड का वेद है, उसे सब वेदों का रस कहने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोपद ब्राह्मण का रचयिता भक्ति कांड को ज्ञान कांड का सार समझता है, अथवा नीरस ज्ञान कांड में यदि सरसता का संचार किसी प्रकार से होता है तो वह प्रकार भक्ति या उपासना ही है। अथो सर्वेषां वा एषः वेदानां रसः यत् ताम् सर्वेषामेव तत् वेदानां रसेन अभिषिञ्चति। इस प्रकार गोपद ब्राह्मण में भक्ति कांड परक जो पंक्तियां उपलब्ध होती हैं, उनमें प्रभु के ओम नाम का तथा उसके जाप का महत्व प्रतिपादित हुआ है। भक्ति को ज्ञान का रस कहना केवल तथ्य पर ही प्रकाश नहीं डालता, यज्ञिकों की भक्ति के संबंध में प्रगाढ़ आस्था को भी प्रकट करता है। उपसंहार। चारों वेदों से संबंधित चार ब्राह्मणों की जो भक्ति विषयक सामग्री हमने गत परिच्छेदों में दी है वह अपने अपने वेद के अनुकूल ही है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और ज्ञान कांड से संबद्ध है, अतः उसमें भक्ति कांड से संबंधित सामग्री का प्राय अभाव है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के साथ संबद्ध है जो कर्म कांड का वेद है और श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश देता है। कर्म अपने सूक्ष्म रूप में ज्ञान और उपासना दोनों के अंदर निहित है, उसकी स्थिति दोनों के बीच में है, अतएव वह दोनों ओर जाता है और दोनों के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है। शतपथ ब्राह्मण भी इसी हेतु ज्ञान तथा उपासना दोनों कांडों की सामग्री रखता है। उसमें दी हुई निरुक्तियां तथा कुछ आख्यायिकाएं ज्ञान कांड का उद्घाटन करती हैं। उपासना संबंधी सामग्री भी उसमें पुष्कल है जो यथास्थान दी जा चुकी है। सामवेद के ब्राह्मण में उपासना का रूप स्पष्ट हो उठा है। गोपद ब्राह्मण भक्ति को ज्ञान का रस कहकर इस संबंध में सामवेद की प्रतिष्ठा को ही वर्धमान करता है। उपनिषद और भक्ति। वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों का विशेष मूल्य है। इनकी संख्या 108 मानी जाती है, परंतु विभिन्न संप्रदायों की विभिन्न उपनिषदें हैं और ये सब मिलकर इस संख्या से कहीं अधिक हैं। प्रामाणिक उपनिषद 11 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। उपनिषदों में तप पूत ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है जिन्हें पढ़कर सांसारिक दुखों से दग्ध मानव शांति लाभ करता है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ कांड संबंधी विस्तृत विवरणों का यहाँ एकांत अभाव है। कतिपय उपनिषद तो यागों का विरोध भी करती है। शब्दों की जो निरुक्तियाँ और विद्वता का जो प्रदर्शन वहाँ है वह भी यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। ऋषियों ने अपनी प्रातिभ एवं प्रज्ञात्मक शक्ति से जिस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया उसी सत्य का इन उपनिषदों में प्रतिपादन हुआ है। उपनिषदों के ऋषि मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत दो रूपों का प्राय उल्लेख करते हैं। बृहदारण्यक तृतीय द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण। जो मूर्त है वह प्रत्यक्ष है और वही मर्त्य है। जो अमूर्त है वह परोक्ष है और वही अमृत है। मूर्त साधन है तो अमूर्त साध्य, अमूर्त से ही मूर्त का प्रभाव है ऐसा कथन भी उपनिषदों में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंत में लिखा है, जैसे मकड़ी ऊर्ण नाभि के अंदर से तंतुजाल और अग्नि से शूद्र विस्फुलिंग निकलते हैं, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा से प्राण, लोक, देव, सब भूत प्रकट होते हैं। जो जिससे निकलता है वही उसका साधन है, अतः प्राण आदि सब उसी अमूर्त आत्मा को जानने के साधन हैं। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है, समग्र विश्व और उसके बाहर भी केंद्रस्थ ज्योति है। यह सर्वव्यापक है, मानव जीवन की चेष्टाओं और प्रयत्नों का एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। यही हमारी पूजा, प्रशंसा और श्रद्धा का भाजन होना चाहिए। बृहदारण्यक 3:32 में याज्ञवल्क्य कहते हैं, एषा अस्य परमा गतिः, एषा अस्य परमा सम्पत्, एषो अस्य परमो लोकः, एषो अस्य परमा आनन्दः, एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। आत्मा ही मानव की परम गति, परम संपत्ति, परम लोक और परम आनंद है। आत्मा के आनंद का लघु अंश पाकर ही अन्य भूत जीवन धारण कर रहे हैं। जिसने इस आत्मा को नहीं जाना उसका दर्शन, श्रवण, वचन, स्पर्श, मनन आदि सभी व्यर्थ हैं। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, इह चेद शकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। 2:3-4। शरीर छोड़ने से पहले ही यदि मानव इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ हो गया तो ठीक है, अन्यथा वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। 1:3-15। जन्म मरण के चक्र से छूटने का एकमात्र साधन इस अनादि अनंत महत से भी परे निश्चल आत्म तत्व को जान लेना है। इस आत्मा को कैसे जाने? उपनिषद के ऋषि इस प्रश्न का समाधान कई प्रकार से करते हैं। हम यहाँ भक्ति क्षेत्र से संबंधित समाधानों पर ही विचार करेंगे। भक्ति भावना। आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति की महत्ता प्रायः सभी संप्रदायों को मान्य है। भक्त अपने आराध्य देव को भक्ति भावना द्वारा अवगत कराना चाहता है। ज्ञान मार्ग की दुरूहता, योग पथ की जटिलता तथा वाम मार्ग की विभत्तता से घबराकर सरल वृत्ति का साधक भक्ति भाव को ही अपनाता है। अन्य पथों पर सीमित साधक वृंद ही चल सकता है, पर भक्ति पथ सबके लिए उन्मुक्त है। इस मार्ग में साधक को अपनी मनोवृत्ति केवल एक ओर से दूसरी ओर मोड़ देनी पड़ती है। भक्त अपने इष्ट देव की आराधना में अपने सर्वस्व को समर्पित कर देता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, क्योंकि उसका प्यारा प्रभु सबके अंदर विद्यमान है। वह विनयशील है, उसका अस्तित्व प्रभु की पूजा के लिए है, इसके अतिरिक्त उसकी अपनी कोई भी कामना नहीं। भक्त का जीवन भगवनमय होता है, उसके अंदर प्रभु दर्शन की उत्कट लालसा रहती है और उसकी बांकी झांकी पर स्वल्प झलक पर वह आत्म विभोर हो उठता है। भक्ति मार्ग सरस मार्ग है। तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि कहता है, यद्वै तत्सुकृतम रसो वै सह रसम ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। 7.2 प्रभु निश्चय ही रस रूप है, भक्त इन्हीं रस रूप प्रभु को पाकर आनंद पूर्ण हो जाता है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। 9.1 जहाँ वाणी विलास ज्ञान कथन और मनन नहीं पहुँच पाते, हाथ पैर मार कर लौट आते हैं, वहाँ ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाला साधक सब ओर से निर्भय हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद प्रभु के उपासक का रूप निम्नांकित शब्दों में उपस्थित करती है, स वा एष एवं पश्यन् एव मनवानः एवं विजानन् आत्मरतिः आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। 7.25.2 प्रभु का उपासक सर्वत्र प्रभु को ही देखता है, प्रभु का ही चिंतन करता है, उसी का बोध करता है, वह आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन तथा आत्मानंदी बन जाता है। वह स्वराट है, समस्त लोकों में उसकी यथा काम गति होती है। बृहदारण्यक उपनिषद प्रभु के भक्त को बालक के समान बनने का उपदेश देती है, तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम् निर्विद्य बालेन तिष्ठासे। 3.5 ब्रह्म की ओर जाने वाला साधक अपने पांडित्य का परित्याग करके बाल भाव से रहे, जैसे बालक निरीह होता है, सांसारिक ऐषणाओं में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार भक्त भी निरीह और निष्प्रिय होता है। बालक अपनी सुरक्षा के लिए माँ पर अवलंबित है, वैसे ही भक्त अपने प्रभु पर। परम देव की कृपा ही भक्त का सर्वस्व है। भक्त को प्रभु की प्राप्ति प्रभु के प्रसाद से ही संभव होती है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। 2.23 यह श्लोक मुंडक उपनिषद के 3.2.3 में भी मिलता है। यह आत्म तत्व व्याख्यान से नहीं मिलता, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से मिलता है। यह आत्मा जिसे स्वीकार कर लेता है उसे ही यह प्राप्त होता है, उसी के सामने यह अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है। अरणो रणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। 2.20 यह श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद का 3.20 भी है। आत्मदेव सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। कामनाओं से रहित साधक होने की कृपा से शोक रहित होकर उनकी महिमा के दर्शन करता है। श्रद्धा भक्ति भावना का अनिवार्य अंग है। श्रद्धा से विहीन व्यक्ति भक्त नहीं, और कुछ हो तो हो। उपनिषदों के आधार पर भी आत्मा को जानने का सर्व प्रमुख साधन श्रद्धा ही है। अविचल आत्मविश्वास आत्म तत्व तक पहुँचा देता है। कठोपनिषद में लिखा है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। 2.3.12 यह आत्मा वाणी से नहीं जाना जाता, न चक्षु और मन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य कहता है यह है, उसके अतिरिक्त यह किसी अन्य को कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात जो प्रभु में अचल आस्था रखते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ईश्वर विश्वासी हैं, वही उसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्म तत्व में जिस प्राणी का विश्वास ही नहीं, उसके लिए आत्म प्राप्ति का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। श्रद्धा विश्वास इस रूप में भक्ति भावना का मूलाधार है। मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है, तप श्रद्धे ये ह्युप वसंत्यरण्ये शांता विद्वांशो भैक्ष चर्याम चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृत स पुरुषो हव्ययात्मा। 1.2.11 जो विद्वान शांत स्वभाव वाले हैं, भिक्षावृत्ति पर अवलंबित रहकर वन में निवास करते हैं और तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण से शून्य हुए सूर्य द्वार से चलकर अमृत अव्ययात्मा पुरुष को प्राप्त करते हैं। छांदोग्य उपनिषद भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। 1.1.10 साधक जो कुछ कार्य विद्या श्रद्धा और समीपस्थ सेवा के द्वारा करता है वही तेजस्वी होता है। श्रद्धा मन की भवृत्ति है जो साधक को विश्व की विविधता के भीतर एक सूत्रता के दर्शन कराती है। तर्क द्वारा यह संभव नहीं है। यम नचिकेता से कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठोपनिषद 1.2.9 तर्क से वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती जो अध्यात्म विद्या में दृष्टिगोचर होती है। श्रद्धा एक ऐसा विश्वास है जो तर्क सम्मत कारण की अपेक्षा नहीं रखता। परंतु तर्क के क्षेत्र से बाहर रहकर भी यह तर्क का विरोधी नहीं है। ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का कार्य श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही चलता है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर ही कार्य में संलग्न होता है कि दिन के पश्चात रात्रि आएगी और रात्रि के पश्चात सूर्योदय होगा। इसके मानने के लिए उसे तर्क के झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर आर्थर एडिंगटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक श्रद्धा विश्वास के इस पक्ष को स्वीकार करते हैं। In this age of reason, faith yet remains supreme. Consider, for instance, the knowledge that the distance of the moon is about 240,000 miles. This means that 240,000 into 1760 yards sticks placed end to end would reach from here to moon. This is called hypothetico-observational knowledge. Arthur Eddington, Philosophy of Physical Science. You could not be a scientist if you did not know that the external world exists in reality, but that knowledge is not gained by any process of reasoning. It is a direct perception akin to what we call faith. Albert Einstein. Science can only be created by those who are thoroughly imbued with the aspiration towards truth and understanding. This source of feeling, however, springs from the sphere of religion. To this sphere also belongs the faith. I cannot conceive of a genuine scientist without that profound faith. Albert Einstein, Out of My Later Years, page 26. प्रसिद्ध दार्शनिक कांट और आचार्य शंकर ने भी अज्ञात को ज्ञात करने में तर्क की व्यर्थता तथा श्रद्धा की उपयोगिता का समर्थन किया है। योग दर्शन नियमों के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान को रखता है, जिसमें प्रपत्ति, श्रद्धा और अटल विश्वास निहित है। गुरु, हम सब जीवन यात्रा के यात्री हैं। इस यात्रा में जो गंतव्य स्थल के निकट पहुंचता जाता है, वह अन्यों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पथ की सहजगम्यता, वैषम्य, रपटन, चढ़ाई आदि सभी बातों से परिचित रहता है। अतः जो व्यक्ति इसके संपर्क में आता है, उसे वह इन सभी से सावधान कर सकता है। जीवन पथ में पगडंडियां भी अनेक हैं और सभी व्यक्ति एक ही पगडंडी नहीं पकड़ते, अतः सबका अनुभव भी अपना अपना होता है। अध्यात्म मार्ग भी एक नहीं अनेक दिशाओं में जाता है। इस मार्ग में कोई ज्ञान का आश्रय लेता है, कोई कर्म का और कोई भक्ति का। सभी स्वभावना द्वारा अपने लक्ष्य की सिद्धि करना चाहते हैं। अतएव जिसको जिस दिशा का अनुभव है, वह उसी दिशा में चलने वाले पथिक को मार्ग दिखा सकता है और उस पथ पर आगे बढ़ा सकता है। गुरु अर्थात समर्थ पथ प्रदर्शक का महत्व इसी हेतु प्रत्येक दिशा में आवश्यक माना गया है। उपनिषदों के निम्नांकित उद्धरण इसी तथ्य का उद्घाटन करते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् यत्तर्क मणु प्रमाणात्। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ, यां त्वमापः सत्य धृतिर्बतासि त्वां दृणो भूयान्नचिकेतः पृष्ठा। कठ अध्याय एक, दूसरी वल्ली। अनेक व्यक्तियों को तो आत्मा के संबंध में सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। कुछ व्यक्ति सुन लेते हैं पर उसे समझ नहीं पाते। इसका वर्णन करने वाले और प्राप्त करने वाले अत्यंत विरले हैं। कुशल आचार्य द्वारा सिखाया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। वह आत्मा अयोग्य गुरुओं द्वारा सिखाए जाने पर समझ में नहीं आता, और जब तक योग्य आचार्य इसके संबंध में न समझाए, तब तक इस क्षेत्र में प्रवेश ही संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। हे नचिकेता, आत्मज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं होता। जब कोई ऐसा आचार्य मिले जिसने इसे प्राप्त किया है और वह आत्मा के संबंध में ज्ञान दे, तभी यह सुगमता से समझ में आ सकता है। नचिकेता, तुम सत्य धारणा वाले हो, हमें तुम्हारे समान और भी शिष्य मिले। इन उद्धरणों में योग्य आचार्य की अनिवार्यता का तो उल्लेख है ही, साथ ही यह भी कहा गया है कि शिष्य भी योग्य जिज्ञासु हो। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। मुंडक एक दो। कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोगों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य धारण कर ले, क्योंकि इस कृत से किए हुए सकाम कर्म से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता। उसे आत्मज्ञान के लिए हाथ में संविधा लेकर वेदज्ञ एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए। वह विद्वान गुरु समीप आए हुए पूर्णतया शांत चित्त वाले इंद्रिय जयी शिष्य को ब्रह्म विद्या का तात्विक रूप से उपदेश करे, जिससे वह शिष्य उस अविनश्वर सत्य पुरुष को जान सके। इन उदाहरणों में शिष्य के गुण इस प्रकार वर्णित हुए हैं: उसका चित्त शांत हो, वह इंद्रिय संयमी हो, विरागी हो और उसके हाथ में संविधा हो, अर्थात हृदय में उच्च कोटि की श्रद्धा हो। जैसे संविधा अग्नि के पास जाकर अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है और अग्निमय बन जाती है, उसी प्रकार शिष्य निराभिमान होकर गुरु के समीप पहुंचे और उसके बताए हुए ज्ञान में अपने को लीन कर दे। योग्य गुरु के गुण इस प्रकार कहे गए हैं: गुरु क्षोत्रिय अर्थात वेदज्ञ हो, पर ब्रह्म परमात्मा में उसकी एकांत निष्ठा हो और वह तत्व विवेचन पूर्वक ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकता हो। यथा सौम्य पुरुषम गांधारेभ्यो अभिनद्धाक्षम आनीयतम ततो अतिजने द्विसृजेत स यथा तत्र प्रांग्वा उदंग्वा अधरांग्वा प्रत्यंग्वा प्रधमायित अभिनद्धाक्ष आनीतो अभिनद्धाक्ष विसृष्टः तस्य यथा अभिनहनम प्रमुच्य प्रब्रूयात एताम दिशम गांधारा एताम दिशम वज्र व्रज इति स ग्रामात ग्रामम पृच्छन् पंडितो मेधावी गांधारा नेव उपसंपद्येत एवमेव इह आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षेत संपत्ते इति। दो छांदोग्य 6-14। आरुणी उद्दालक श्वेत केतु को समझाते हैं: हे सौम्य, जैसे किसी आंखें बंधे हुए पुरुष को गांधार देश ले जाकर जन शून्य स्थान में छोड़ दें, तो वह पूर्व उत्तर दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके जोर से बोलेगा, मुझे आंखें बांध कर यहाँ लाया गया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया गया है। उस समय उसके चिल्लाने को सुनकर कोई पुरुष उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दे और कहे, गांधार इस दिशा में है, इसी दिशा को जा, तो वह व्यक्ति यदि मेधावी और चतुर है, एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पूछता हुआ गांधार में ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान पुरुष को समझो, अर्थात जिस समझदार जिज्ञासु को योग्य आचार्य मिल गया है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसके मुक्त होने में जब तक शरीर है तभी तक विलंब है। इन उदाहरणों में शिष्य का मायावी प्रपंचों से अंधा अर्थात अविवेकी बनना, गुरु की सहायता से अविवेक का नष्ट होना और मार्ग की दिशा का ज्ञान होने पर स्वयं अपनी पार्थिव शक्ति से उस दिशा में चलकर गंतव्य प्राप्त करना वर्णित हुआ है। कबीर का नीचे लिखा दोहा इन्हीं भावों को प्रकट करता है: पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सद्गुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। सद्गुरु अपने शिष्य के हाथ में ज्ञान दीपक रख देता है, जिसके प्रकाश में चलता हुआ शिष्य आत्मबोध प्राप्त करता है। ऊपर के उदाहरण ज्ञान परक कहे जा सकते हैं, यद्यपि भक्ति के क्षेत्र में भी प्रभु की प्राप्ति को ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है और दी भी गई है। संस्कृत में जो धातु ज्ञान परक है वह प्राप्ति परक भी है। श्वेता श्वतर उपनिषद का निम्नांकित श्लोक विशुद्ध रूप से भक्ति परक कहा जा सकता है: यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महान पुरुष के हृदय में ये कहे हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इस उदाहरण में शिष्य का पूर्णतया श्रद्धालु तथा भक्त होना आवश्यक माना गया है। भक्ति के अन्य अंग: ज्ञान अर्थात स्वाध्याय, तप तथा त्याग भी भक्ति के अंग हैं। उपनिषदों के ऋषि इन तीनों के महत्व को मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं। मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है, सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः। जो स्वाध्यायशील तथा सम्यक ज्ञान रखने वाले हैं, जो सत्यवादी नित्य ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं, जो यति अर्थात त्यागी हैं, भोगी नहीं, जिनके दोष इन समस्त साधनों द्वारा क्षीण हो चुके हैं, वे ही शुभ्र ज्योतिर्मय परमात्मा का दर्शन करते हैं। उपनिषदों में अन्यत्र भी इन साधनों का बाहुल्य से वर्णन हुआ है, परंतु इन्हें भक्ति भावना के अंग नहीं ज्योतिर्मय प्रभु के दर्शन कराने वाले साधन कहा गया है। भक्ति भाव का जो विवेचन वैष्णव संप्रदाय में हुआ है उसमें इन साधनों को भक्ति का अंग माना गया है। वहाँ भक्ति साध्य है और ज्ञान तप आदि साधन, अंत में भक्ति भी साधन है जिसका साध्य परम देव परमात्मा है। ओम नाम का आश्रय: प्रभु का निज नाम ओम है। गुणों के आधार पर प्रभु के और भी अनेक नाम है, पर वे जीवात्मा पर भी घट सकते हैं। ओम एक ऐसा नाम है जो केवल परमात्मा का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। यह अव्यय है जिसका लिंग वचन आदि कुछ नहीं है। वह समस्त नामों का ही नहीं निखिल वांग्मय का मूलाधार है। छांदोग्य उपनिषद के प्रारंभ में ओम की उपासना का महत्व प्रतिपादित हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम शिक्षा अध्याय वल्ली के अष्टम अनुवाक में भी ओम की महिमा का वर्णन है। ईशोपनिषद जो स्वल्प अंतर के साथ यजुर्वेद के 40वें अध्याय से ही निर्मित हुई है कहती है, ओम क्रतो स्मर, हे पुरुषार्थी तू ओम का स्मरण कर। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के श्लोक 15, 16 और 17 में लिखा है कि समस्त वेद ओम अक्षर की ही व्याख्या करते हैं, सारे तप इसी का वर्णन करते हैं और ब्रह्मचारी व्रती बनकर इसी पद की कामना करते हैं। ओम अक्षर ही ब्रह्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है। इसको जानकर मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। ओम का अवलंबन सबसे श्रेष्ठ है, यही सबसे उत्कृष्ट अंतिम आश्रय है। इसी को जानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रश्नोपनिषद 5-7 में भी ओंकार को आयतन अर्थात आश्रय कहा गया है और लिखा है कि ओम को प्रथम मात्रा की उपासना से साधक ऋचाओं द्वारा इस लोक में पहुंचाया जाता है। दो मात्राओं की उपासना करने वाला यजु श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक और पूर्ण रूप से ओम की उपासना करने वाला साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है। विवेकशील ज्ञानी साधक ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा उस परम देव को प्राप्त कर लेता है जो शांत अजर अमर अभय और सर्वश्रेष्ठ है। मुंडक उपनिषद द्वितीय खंड के श्लोक 3 और 4 में आत्मा को बाण तथा ओम को धनुष अर्थात उसका आश्रय कहती है। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महाशस्त्रम महास्त्रम शरम न्युपासा निशीतम संधित संधयित आयम में तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत। जिस प्रकार किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नोक को स्थान पर धर कर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े हुए मोर्चे आदि को दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बाण को उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणव रूप धनुष पर भली भांति संधान करना चाहिए। आत्मा को ओम के जाप एवं भावना द्वारा परमात्मा में लीन करना चाहिए। जैसे धनुष को भली भांति खींच कर उस पर रखे बाण को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, उसी प्रकार दीर्घ काल तक अर्थ भावना द्वारा ओम का जप आत्मा को निश्चित रूप से परमात्मा में प्रविष्ट कर सकता है। इसी उपासना द्वारा आत्मा को परमात्मा के अंदर अविचल स्थिति प्राप्त होती है। ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और परब्रह्म परमेश्वर उसका लक्ष्य है। प्रमाद रहित सावधान साधक इस लक्ष्य का वेध कर सकता है। उसे वेध कर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। इसके आगे श्लोक 6 में भी ओंकार के ध्यान का आदेश है। इन कथनों से सिद्ध होता है कि उपनिषदों के ऋषि ओंकार के प्रेम पूर्वक उच्चारण तथा उसके अर्थ रूप परमात्मा के प्रगाढ़ चिंतन अर्थात निधिध्यासन को प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय मानते हैं। उनकी सम्मति में ओंकार का अवलंबन ही तम रूप क्लेश जाल से पार करने वाला है। भक्ति के क्षेत्र में नाम के जाप का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। उपनिषद युग तक प्रभु का मुख्य नाम ओम ही रहा है। परवर्ती युगों में इसका स्थान अन्य नामों ने ले लिया, पर यह भी साथ साथ चलता रहा और आज भी अनेक साधक इसी के आश्रय से रहते हैं। यह ऐसा हाथी का पैर है जिसमें अन्य सभी नाम रूपी पशुओं के पैर समा जाते हैं। ब्राह्मणोपनिषदीय भक्ति पर एक दृष्टि। पीछे ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों में भक्ति के तत्वों को खोजने का जो प्रयत्न किया गया है उससे सिद्ध होता है कि वह युग भक्ति के सर्वांगीण रूप की अभिव्यक्ति के लिए असमर्थ था। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ संबंधी विवरणों से ओतप्रोत है और भविष्य और उपनिषदों में अध्यात्म ज्ञान की चर्चा प्रमुख है। यज्ञों के साथ जिस जप तप व्रत दान आदि का अनुष्ठान भेद समझा गया है उसके उल्लेख में हमें भक्ति के कुछ तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। उपनिषदों में ज्ञान कांड की प्रधानता है। यह ज्ञान कांड विश्व के मूल में निहित अंतिम अध्यात्म सत्य से संबद्ध है। आध्यात्मिक भावना भक्ति के मूल तक पहुँचाती है और उपनिषदों में उसकी असंदिग्ध अभिव्यक्ति है। प्रभु के प्रसाद और अनुग्रह पर कठ तथा मुंडक दोनों ही उपनिषदों ने बल दिया है। भक्ति का मूलाधार प्रभु की कृपा ही है। यह तथ्य आगे चलकर शैव एवं वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में स्वीकृत हुआ। वैष्णवों में आचार्य वल्लभ ने प्रभु के प्रसाद को पुष्टि नाम दिया तो शैवों और शाक्तों ने उसे शक्तिपात कहकर पुकारा। भक्ति के अंगों में श्रद्धा जप तप स्वाध्याय तथा व्रत की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत में जैसा हम आगे चलकर लिखेंगे भक्ति के इन अंगों के अनुष्ठान को अत्यंत आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद दोनों ही इनके महत्व का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जिस यज्ञ कांड को प्रमुखता देते हैं उसका स्त्रोत भी परम देव प्रभु ही है। यही कारण है कि यज्ञों के समय प्रभु के ओम नाम तथा मंत्रों के जप का विधान पाया जाता है। वो पद ब्राह्मण के प्रारंभ में ही ओम संबंधी प्रशंसा परक अनेक वाक्य हैं। उपनिषदों के जो अंश हमने पीछे उद्धृत किए हैं वे भी ओम की स्तुति मुक्त कंठ से करते हैं। ओम अक्षर को वे सर्वश्रेष्ठ आश्रय कहते हैं और इसी आश्रय से परम गति की प्राप्ति बतलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की यज्ञ प्रक्रिया एक ओर स्वर्ग के लक्ष्य को सम्मुख रखती है तो दूसरी ओर प्रजा तथा प्रतिष्ठा जैसी लौकिक कामनाओं के उद्देश्य की ओर भी अग्रसर होती है और इनकी सिद्धि के लिए प्रणव के जप का निर्देश करती है। भक्ति कांड लौकिक ऐषणाओं से असंपृक्त है। उसका एकमात्र लक्ष्य प्रभु है। उसकी आराधना उपासना पूजा और स्तुति उसकी विशेषता है। उपनिषदें भी ओम के महात्म्य रूप में यश तथा समृद्धि जैसे फलों की प्राप्ति का उल्लेख करती हैं, पर प्रधानता वहाँ ब्रह्म प्राप्ति की ही है। श्वेताश्वत उपनिषद भक्ति का नाम लेती है और प्रभु प्राप्ति के साथ गुरु भक्ति को भी मान्यता देती है। गुरु भक्ति ने आगे चलकर जो महत्व प्राप्त किया उसे हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य के अध्येता भली भांति जानते हैं। प्रत्येक युग अपनी कतिपय सैद्धांतिक विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ता है। उस युग की चिंतन पद्धति तथा आचार प्रणाली को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। ब्राह्मण युगी यज्ञ को परिपाटी तथा उपनिषदों की अध्यात्म चर्चा उसी का परिणाम है, पर कोई वस्तु समूल नष्ट नहीं हो जाती। इसी हेतु भक्ति कांड के उपादानों की चर्चा भी ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध हो जाती है। फिर भी वैदिक युग में भक्ति का जैसा सर्वांग विकसित रूप दिखाई देता है वैसा ब्राह्मण तथा उपनिषदों के युग में नहीं। वैदिक मंत्रों में ऋग्वेदीय वरुण सूक्त के अंतर्गत प्रभु के विरह और तज्जन्य व्याकुलता का जो मर्मवेदी वर्णन है, प्रभु के साथ एक हो जाने की जो भक्त की हृदय स्पर्शी तीव्र भावना प्रकट हुई है, साथ ही भक्ति के जिन अंगों तथा साधनों का बाहुल्य से उल्लेख हुआ है वह ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि वैदिक युग में जिस ज्ञान कर्म और उपासना का समुचित समन्वय अथवा परिपूर्ण विकास दृष्टिगोचर होता है, जिसमें न कोई आगे है न कोई पीछे है, वह ब्राह्मण तथा उपनिषदीय युग में एकांगी बन गया, अपने उसी रूप में सुरक्षित न रह सका। ब्राह्मणों में कर्म कांड को अपनाया तो उपनिषदों ने ज्ञान कांड को। भक्ति कांड इस युग में यद्यपि क्षीण हो गया फिर भी उसके अंकुर यहाँ विद्यमान है। ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के ऋषि उसका एकांत परित्याग नहीं कर सके, वे उसे पकड़े रहे और उसके अंगों का कुछ न कुछ प्रचार भी चलता रहा। ओम नाम के जाप का महत्व तो ज्यों का त्यों बना रहा। ब्राह्मणों का यज्ञ कांड किस प्रकार मूर्ति पूजा के रूप में परिणत हुआ इसे हम वैखानस संहिताओं पर लिखते हुए प्रदर्शित करेंगे।